ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
तो आज के इस 19 मार्च के सभा में आपका सबका स्वागत है। सबसे इम्पोर्टेंट बात सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि हम सब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनाओं संघ के सदस्य हैं जो श्रील प्रभुपाद ने स्थापन किया है, और श्रील प्रभुपाद आगे के 10,000 साल तक उसके प्रधान आचार्य रहेंगे। अपने आचार्यों के मार्गदर्शन में प्रभुपाद जी इसके प्रमुख आचार्य रहेंगे, प्रोमिनेंट आचार्य 10,000 साल तक। और प्रभुपाद जी के समय वो अकेले गुरु थे, और प्रभुपाद जी ने जीपीसी को स्थापन किया उनके पश्चात इस्कॉन को संभालने के लिए, और उसके माध्यम से किसी भी एक व्यक्ति को पूरा पदभार संभालने के लिए आदेश नहीं दिया। कोई भी एक व्यक्ति इस्कॉन संस्था का पदाधिकारी नहीं है कि प्रभुपाद जी के बाद में ये है, ऐसा नहीं। उन्होंने सभी लोगों को एकत्र होकर गवर्निंग बॉडी कमीशन के रूप में एकत्र आने को कहा गौर पूर्णिमा को, और वहाँ पर सब मिलकर जो निर्णय होंगे लेंगे वो मेरा निर्णय होगा सहयोग के साथ में। तो वो दूसरी पीढ़ी थी प्रभुपाद जी के बाद में जिन्होंने इस्कॉन को संभाला 1977 के बाद, वो फिर अभी तीसरी पीढ़ी तैयार हो गई है। तीसरी पीढ़ी तो तीसरी पीढ़ी जो है वो इन गुरुओं की शिष्य है। और चूंकि हम सब लोग भौतिक दुनिया में से हैं तो भौतिक दुनिया में भेदभाव सब जगह होता है, भेदभाव सब जगह होता है, ये हमारा ये तुम्हारा। तो इसमें बहुत इमैच्योरिटी अपरिपक्वता निर्माण होती है कि मैं इनका डिसाइपल हूँ, आप किनके डिसाइपल हो, तो मेरे गुरु भाइयों से अधिक आसक्ति और बाकियों से थोड़ा सा दूर भेदभाव, ये प्रकार का जो भाव है। कल परसों इस विषय में चर्चा हो रही थी, क्या हाँ मैं तुम्हारे गुरु का डिसाइपल नहीं हूँ ना इसलिए आप मुझसे ऐसा बर्ताव कर रहे हो, ऐसे लोगों की चर्चा हो रही थी। तो हमने इसको जोरदार खंडन किया उस बात का कि ये केवल मनगढ़ंत बातें हैं, हम सब प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स हैं और प्रभुपाद जी के पश्चात एक व्यक्ति का हमने आश्रय लिया है गुरु के रूप में, लेकिन हमारा जो भाव है बहुत ही उदार हृदय होना चाहिए। जिसमें उदार हृदय का मतलब है जो सबको एकोमोडेट कर लेता है, सम्मिलित कर लेता है। उदार हृदय भाव होना बहुत आवश्यक है, आगे और आवश्यक होगा क्योंकि आगे तीसरी पीढ़ी के लोग भी गुरु बन जाएंगे और उनके भी शिष्य होंगे। और ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन अगर एकजुट रहना है तो ये सब लोगों को एक उदार हृदय भाव उत्पन्न करना बहुत ज़रूरी है। एक है कुप मंडूक प्रवृत्ति, जो केवल अपने कुएं में देखता है और अपने कुएं में कितना है क्या है उसको ही देखता है, बस वही मेरा है बाकी सब पराया है। और एक सागर प्रवृत्ति रखता है जो सागर में तो अनंत जल है, अनंत जीव है सब प्रकार के, तो वो भाव हमारे में होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो आप प्रभाव होता है ना कि ये मेरा वो पराया, ये शुरू होता है लीडर से। हाँ, ये मत समझना कि वो कुछ नए डिवोटीज है ना वो ऐसा ऐसा सोचते हैं, वो ऐसा ऐसा होता है, उनको कैसे गाइड करें। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ये लीडर्स ही इस बातों को सूक्ष्म रूप से फैलाते हैं। तो ये अपने आप को परखना जांचना बहुत ज़रूरी है कि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से क्या ये कर रहा हूँ, क्या क्या मेरे हृदय में कुछ अलग है और मैं बाहर के लोगों को लगता हूँ हाँ मैं सब एक ही है हम लोग, लेकिन अंदर से हमारे अंदर वो आप प्रभाव है क्या, वो हमको परखना चाहिए हम सब लोगों को। आपने भी विषय छेड़ा इसलिए मैं एकदम स्पष्ट रूप में बात कर रहा हूँ, हाँ उसका बुरा मत मानना, क्योंकि लीडर जिस दिशा में देखता है सब लोग उस दिशा में देखते हैं, ये मानव का स्वभाव है। जहाँ कहीं लीडर अगर कुछ एक एक्शन करता है तो सब लोग भी वैसे ही एक्शन करते हैं। जैसे बंदरों को कहा था कि अयोध्या में जाओगे ना तो अच्छी तरह से बर्ताव करना, बोले कैसे बर्ताव करें, बोले हनुमान जी जो करेंगे ना वही करना, हनुमान जी को देखते रहना, वो जो भी करेंगे वैसा ही आपको करना है। तो सब लोग हनुमान जी को देखते थे, सबको चने दिए गए, तो चने दिए गए तो हनुमान ने चना उठाया और उसको ऐसा दबाया तो छिलके से चना उड़ गया आकाश में, तो एकदम स्पॉन्टेनियसली हनुमान जी आकाश में उड़े और उस चने को पकड़ा और खाया, तो सारे बंदरों ने चने हाथ में लिए उसको दबाया आकाश में उड़ाया और छलांग लगा के खाया। उनको लगा ये यहाँ का रिवाज है, हनुमान जी ने हमको गाइड किया है, समझ आपको आया। हनुमान जी के हाथ से वो गलती से छूट गया था और वो आकाश में उड़ गया था, और हनुमान जी ने एकदम स्पॉन्टेनियसली उसको छलांग लगाकर पकड़ा और खाया। लेकिन आप लोग अनजाने में भी जो करते हो उसको भी लोग फॉलो करते हैं, आप लोग ज़्यादा प्लानिंग ना करते वैसे स्फूर्त कुछ काम करते हैं, कभी कभी हो जाता है एक इंसान के रूप में। तो उसको भी लोग फॉलो करते हैं, ये मत समझना कि आप जब सोच समझ के आते हो और सोच समझ के कुछ कार्य करते हो तो ही लोग उसको फॉलो करते हैं, आपके प्रवचन सुन के ही फॉलो करते हैं। ये समझना बहुत गलत फहमी है कि हम लोग जो मीटिंग में अच्छी तरह से सोच समझ के प्लानिंग करके आके बोलते हैं उसको लोग फॉलो करते हैं, लोग आपके 100% व्यवहार को फॉलो करते हैं। आप जो अकेले में करते हो व्यवहार और साथ में करते हो सबको देखते रहते हैं लेंस में, दूरबीन से देखते रहते हैं सूक्ष्म रूप से। मुझे छोड़ो ना उसको भी, प्लीज़ डोंट डिस्ट्रैक्ट नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी सीरियस टॉपिक। हाँ तो इसलिए सबसे पहले अगर भक्त समुदाय को अगर ट्रेन करना है तो सबसे पहले हमको ट्रेन होना पड़ेगा, तो हमारी जो प्रवृत्ति है उसको आमूलाग्र बदलना होगा। आमूलाग्र मतलब आमूल अग्र, ऊपर से नीचे तक, नख शिखांत, नख शिख बदलना होगा। और प्रामाणिक रूप से हम सब लोगों को ये मन में बात बसानी होगी कि हम सब लोग प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं और एक गुरु के शिष्य हैं, लेकिन हम सब एक परिवार के हैं। उसमें किसी भी समय पर सूक्ष्म रूप में भी, मन के कोने में भी, अदृश्य रूप में भी ये आप पर भाव जो है वो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हम सब लोगों को ना प्रभुपाद जी की संस्था का वेलफेयर सोचना चाहिए हमेशा, मेरे गुरु जी के शिष्यों का कल्याण केवल सोचते रहना चाहिए। प्रभुपाद जी की संस्था जो है वो वसुधैव कुटुंबकम है, 600 मंदिर है हमारे, 603 और कितने सारे शायद 100 के ऊपर फार्म हाउसेस है, गुरुकुल है, रेस्टोरेंट्स है, गौशाला है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारा हमारा परिवार है। आप शायद रशिया में कभी जाएंगे नहीं, कभी गए भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो आपका परिवार है। जब वहाँ से लोग आएंगे तो आपको परिवार की भावना होनी चाहिए। तो इसलिए थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, आप एक विश्वव्यापी संस्था के सदस्य हो और दिल्ली में रहते हो, तो दिल्ली का एक रेफरेंस है उसका और एक विश्व का रेफरेंस है, दोनों को आपको साथ में लेके चलना है, उसमें तो भेदभाव नहीं करना है, दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारा इंटरेस्ट जो है वो होना चाहिए कि हमारे सामने जो व्यक्ति है उसको हम कृष्ण भावना में आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रेरणा दें, तो फिर वो किसी भी गुरु का शिष्य हो या नई शिष्य हो अभी, या मेरे गुरु से दीक्षा लेने के बजाय वो किसी से और प्रेरणा है उसकी, इस तरह से सोचकर हम उसका, हमको उसका प्रचार नहीं करना चाहिए। हमको जेन्युइनली, हाँ मुझे हमेशा इस बात पर ना हिज होलीनेस भक्ति रसामुद महाराज का उदाहरण मुझे हमेशा याद आता है, क्यों चाहे वो मीरा रोड के मंदिर में जाए, चाहे जुहू के मंदिर में जाए, चाहे राधा गोपीनाथ मंदिर में जाए, चाहे दिल्ली में चले जाएँ, चाहे पुणे में चले जाएँ, उनका जो भाव है ना वो सर्वसमावेशक भाव है उनका, ऑल इन कंपासिंग। वो कभी भी सोचते नहीं कि अभी मैं मेरे राधा गोपीनाथ मंदिर में आ गया, मेरे गुरु भाइयों के बीच में आ गया, अभी मैं दिल्ली में आया, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के गुरु के डिसाइपल्स हैं, तो ये तो मेरा घर नहीं है। ऐसी भावना नहीं होती कभी भी, कभी भी। बहुत मुझे उसमें प्रेरणा मिली है उनसे, और जब भी व्यक्तिगत रूप में किसी को काउंसलिंग करते हैं, मिलते हैं, उपदेश करते हैं, तो भी उनका यही भाव रहता है। ये सोचकर नहीं करते कि हाँ ये तो राधा गोपीनाथ मंदिर के हमारे गुरु भाई हैं, और ये दिल्ली के गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य हैं, और ये लोकनाथ महाराज के शिष्य हैं, और ये इंद्रदुम महाराज के शिष्य हैं, और ये तो अभी पहले हमारे गुरु से एस्पायरिंग थे, अभी बीच में पता नहीं क्या हो गया तो इनसे दीक्षा ले लिया। तो इससे उनका व्यवहार कभी भी बदलता नहीं है, और हमारा बदलता है निश्चित रूप से। तो हमको ये मनोवृत्ति से मुक्त होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब तक लीडर के मन में वो सर्वसमावेशक भाव नहीं रहता है, तब तक वो एक्चुअली अपने अनुयायियों को ठीक से गाइड नहीं कर सकता है। इसलिए पहले आप सब लोग मन में ठान लो कि हम लोग कभी भी ऐसी गटबाजी नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की कभी भी नहीं करेंगे। अगर आपको प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है और वास्तविक रूप में अपने गुरु को प्रसन्न करना है, तो आपको कभी भी ये गटबाजी सूक्ष्म रूप से भी, अदृश्य रूप में भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे मन में कुछ भाव है और मैं कुछ अलग प्रवचन दे रहा हूँ, फिर भी मेरे मन का भाव आपके मन पर, भावना पर असर करेगा। अगर मेरे मन में कुछ भौतिक वासनाएं हैं और मैं विरक्ति के ऊपर प्रवचन दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया प्रवचन दिया विरक्ति के ऊपर, अलग अलग शास्त्रों से अलग अलग लोगों का उदाहरण लेकर, अगर मेरे मन में अगर वो अलग अलग प्रकार की वासनाएं हैं, तो वो आपको ज़रूर परिणाम करेगी आपके चेतना पर। जो मुख से बोला वो भी परिणाम करेगा, लेकिन हृदय की भावना जो है वो भी परिणाम करेगा। अगर मैं बहुत दुखी हूँ समझो, और आपको प्रवचन दे रहा हूँ, तो मेरे दुख की चेतना का भी आप पर असर होगा। उसको आप हंसते हुए एक ड्रामा करके, एक जोकिंग लेक्चर देके इसको छुपा नहीं सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे अंदर की जो चेतना है उसका भी परिणाम आप जिनको मिलते हो उन पर होता रहता है। अगर मैं दुखी हूँ और दुखी होकर घर पर आया, तो मेरे बेटे के चेतना पर उसका परिणाम होगा। और अगर वास्तविक रूप में सुखी हूँ और खुश हूँ, आनंदी हूँ, तो उसका परिणाम मेरे बेटे के कॉन्शियसनेस में। हमारा कोई संवाद नहीं होता है, हम लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन चेतना का आदान प्रदान होता ही रहता है हमेशा। इसलिए अगर हमको बेटी को इस स्थिति में अगर आध्यात्मिक उन्नति करना है, तो हमको पहले हमारी साधना अच्छी करके आनंदी रूप में, स्पिरिचुअली आनंदी होकर रहना पड़ेगा, तब जाकर बिना संवाद के संघ में उसकी चेतना इम्प्रूव होगी। आप समझ में आ रहा है आपको? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। हमारा कोई संवाद नहीं उसके साथ में, शब्द में कोई भाषा नहीं, कोई लैंग्वेज नहीं, कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं हमारा। जो भी है अलग रूप से है, लेकिन वर्ड बाय वर्ड नहीं है। तो अगर हम दुखी रहेंगे तो उसकी चेतना पर दुख का असर करेंगे, अगर हम कृष्ण भावना में आनंदी रहेंगे तो उसकी भावना पर वैसा परिणाम होगा। वैसे ही माता का दुग्धपान करने का भी वैसा ही है। अगर माता बहुत चिंतित है, बहुत बहुत दुखी है किसी बारे में, कोई कुछ कह दिया उसको, और वो दूध पिला रही है अपने बच्चे को, तो उसकी सारी भावनाएं जो है नेगेटिव, वो दूध के साथ में उसके आत्मा पर परिणाम करती है। माता बहुत प्रसन्न है, उसको वातावरण बहुत शांत है घर का, बहुत स्पिरिचुअली बहुत एडवांस्ड है माता जी, और उस कृष्ण भावना में दूध पिला रही है अपने बालक को, तो उसका सारा असर बालक की चेतना पर होगा। वहाँ पर भी संवाद नहीं है, वो 2 महीने का बालक है, 3 महीने का बालक है, तो बात नहीं कर रहा है कुछ, या 6 दिन का बालक है, या तो 15 दिन का बालक है। लेकिन ये चेतना का प्रभाव हर जीव पर, हर स्थिति में होते रहते हैं, एक देने वाला होता है, एक लेने वाला होता है। उसी प्रकार से हम जिसको भी मिलते हैं, हमारी चेतना का असर उस पर होते रहता है। अगर हमारे अंदर सूक्ष्म द्वेष है तो उसका असर होता है, अगर हमारे अंदर लोभ की भावनाएं हैं, धन के बारे में बहुत हमारे लिए लालच लालच है, उसका परिणाम होगा। अगर हम बहुत ही विषय में आ सकते हैं, विषयों में, तो उसका परिणाम होगा। बहुत भोग प्रवृत्ति है तो उसका परिणाम होगा, और बहुत कृष्ण कॉन्शियस हैं तो उसका परिणाम होगा, बहुत दयालु हैं तो उसका परिणाम होगा, बहुत केयरिंग है अपना नेचर तो उसका परिणाम होगा, सब चीज़ का परिणाम होगा। हमारी पत्नी हो या बच्चे हो या हमारे काउंसलर्स हो या हमारे मित्र हो या हमारे नए भक्त हो, सबके ऊपर हमारी चेतना का परिणाम होते रहता है। इसलिए पहले हमको उसको ठीक करना होगा, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। अगर हम वास्तविक रूप में प्रभुपाद जी की सेवा करना चाहते हैं, प्रभुपाद जी की संस्था में अपनी सेवा देना चाहते हैं, तो यहाँ से हमको शुरुआत करनी होगी। फिर आगे हमारे लोगों की ट्रेनिंग हम कर सकते हैं। तो ये मेरा प्राथमिक आपको कहना है, मूलभूत बेसिक। अभी इसके आगे मुझे आप बताइए, प्रश्न पूछिए। तो आपका प्रश्न क्या था कि लोगों को कंफ्यूज कर दे आपको मैंने? नहीं, तो लोगों, जब लोग आते हैं तो उनको पता नहीं चलता है कैसे भाव करना है। हाँ आपको 3 बच्चे हैं, कितनी बार आपको बच्चों से आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, तो आप क्या करते हो? क्या करते हो आप बताओ? आप अपना वात्सल्य कभी छोड़ते नहीं हो, है ना? बच्चे ने आज आपको फॉलो किया, कल नहीं किया, कल खाया और आपके मुंह पे उल्टी कर दिया, तो माँ कहते हैं कि कल से खाना खिलाना बंद, क्योंकि रिस्पांस सही नहीं आया इसका। मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन फिर भी मेरे मुंह पे उल्टी किया, तो कल से खाना नहीं खिलाऊंगी उसको। ऐसे करते हो आप लोग? कभी नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपके मन में मूलभूत अपने बालक के लिए एक वात्सल्य है, एक करुणा है, तो वही से, उसी भावना से आपको लोगों को भी देखना है जो आपके अंदर ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम भी कितने कठोर दिमाग के थे, पता है आपको? मतलब हार्ड नट कैसे थे, हमको भी लोगों ने कितना मेहनत किया हमारे ऊपर, ऐसे परेशान न होते हुए, निराश न होते हुए, निरुत्साही न होते हुए हमारे ऊपर लगे रहे वो, तभी हम लोग कुछ, हमारे अंदर कुछ बदलाव आया, है ना? हम तो इतना तंग करते थे दयाराम प्रभु को, लेकिन वो बेचारे आते रहे, इसलिए एक दिन थोड़ा परिवर्तन हुआ। अगर बोलते क्या ये इतना दूर जाकर भी कुछ रिस्पांस नहीं मिलता है, तो आना बंद कर देते, तो हम आपके बीच में नहीं बैठे होते आज। वो हम तो जानबूझकर जब वो आते थे तो उनको गुस्सा आना चाहिए, इसलिए नॉनवेज ऑर्डर करते थे, बाकी टाइम खाते रहते, लेकिन वो नहीं आना चाहिए इसलिए आते ही हम लोग, मैं नॉनवेज ऑर्डर करता था ताकि उसको घृणा आ जाए मेरे ऊपर और आना बंद कर दे। लेकिन फिर भी आते रहे वो, फिर दोस्ती का वास्ता दिया उन्होंने, चलो आप कह रहे हो मत आओ, लेकिन अभी एक मेरे दोस्त हो तो कम से कम एक दिन मंदिर में आ जाओ। थोड़ा दोस्त तो मैं हूँ, मतलब उसमें कोई संदेह नहीं था, मन में डाउट नहीं था कि भाई दोस्त भी नहीं हो, दोस्त तो है। दोस्ती का वास्ता देकर मंदिर में गए तो परिवर्तन आया ना, उसी दिन सब परिवर्तन आया। एक बार मंदिर में गए तो सब चेंज हो गया। तो किसी न किसी ने हमारे ऊपर बहुत सहनशीलता दिखाकर, निराश न होकर उत्साह से हमारे ऊपर मेहनत किया है। इसीलिए हमको भी किसी के ऊपर कभी क्रॉस नहीं मारना चाहिए, ये ध्यान रखना, एक गोल्डन सेंटेंस है, कभी भी किसी के ऊपर क्रॉस नहीं करना चाहिए कि ये अभी छोड़ दो इसको। ऐसे छोड़े हुए लोग ही बाद में सन्यासी और गुरु बने हुए, जिनको ऐसे छोड़ दिया बोले ये तो बिल्कुल ही बेकार आदमी, वही आगे जाकर अभी इतनी मूवमेंट में, इतनी लीडिंग लीडरशिप पोजिशन में, वो लोग को लगता है ऐसा कि हमारे दृष्टि से ये तो क्रॉस है, ये सोचकर क्रॉस नहीं करना चाहिए कि अगर मुझ पर किसी ने क्रॉस किया तो चलेगा क्या, तो विश्वरूपदास होपलेस है अभी, इसको छोड़ दो अभी, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, कितना भी बुरा होगा तो भी आपकी तरफ से मैं क्रॉस्ड हो गया तो आई विल बी वेरी अनहैप्पी। तो उसी तरह से हमको भी किसी को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुझे अभी एक बात और याद आई, मैंने आपको एक पहला बेसिक बताया कि हम लोग सब प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स हैं, उसके बाद में बिफोर यू स्टार्ट ट्रेनिंग योर पीपल, आप लोगों के बीच में कैसा संबंध है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हमारा कैसे होता है ना, तीन प्रकार के हमारे संबंध होते हैं। एक होता है वरिष्ठ वैष्णव से, जिनको आदर देने में कोई तकलीफ नहीं हमको, मतलब इतने हमारे मन में आदर है कि हम 50 बार झुक सकते हैं, उनका सम्मान कर सेवा कर सकते हैं उनकी, इट्स नेचुरल, बहुत स्पॉन्टेनियस है हमारे अंदर। और दूसरी बात है कि हम जब नए भक्त को मिलते हैं, किसी को नया डिवोटी बना रहे हैं, तो हमारे अंदर अपार करुणा होती है उसके लिए, होती है कि नहीं। हम लोग दिन रात सोच रहे थे उसके बारे में, कब बुलाऊं उसको, कभी बर्थडे है उसका, कभी मैरिज एनिवर्सरी है, कभी उसे मंदिर लेने को लाने के लिए प्रवृत्त करूँ, ये फेस्टिवल है, ये गुरु जी आने वाले हैं, कोई सन्यासी आने वाले हैं, कभी कैसे उसको लेके आऊँ मंदिर में, कैसे उसको महाप्रसाद पहुँचाते रहूँ, राधाष्टमी का, गोकुलाष्टमी का। तो उधर करुणा की कोई कमी नहीं है, आप लगातार उसके बारे में सोच कर उसको लाने का कोशिश कर रहे हो। लेकिन जो आपके साथ वाले भक्त हैं, ना तो उनके प्रति आपको उतना आदर है जितना सीनियर डिवोटी से है, और वो क्योंकि आपके बराबर के, इसलिए करुणा वरुणा का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके स्तर पर है। लेकिन ऐसे कहा गया है कि कृष्ण भावना में टिके रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए अपने साथ वालों से हम कैसा व्यवहार करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको जिसको आप प्रचार कर रहे हो वो आपको बड़ा दिल भर के आनंद आदर देता है, दिल भर के आपका सम्मान करता है, उसमें जब भी आपको मिलेंगे तो आपको धन्यवाद करेंगे, आपको प्रणाम करेंगे, आपको एकदम ग्लोरीफाई करेंगे, सेवा करेंगे। लेकिन वो आदर आपको अपने मित्रों से नहीं मिलेगा। मैं वो आदर द्वारकाधीश प्रभु और माधवानंद प्रभु से उम्मीद नहीं कर सकता कि ऐसे मैं आते ही वो एकदम भाव विभोर हो जाए कि भाई विश्वरूप आ गए ऐसा तो नहीं हो सकता ना, दोस्त है मेरे वो। और उसमें एक विशेष चीज़ ऐसी है कि क्योंकि वो मेरे दोस्त है और साथ में हम लोग भक्त बने हैं, वो मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, कभी भी बोलना चाहे तो एक बार एडवांस डिवोटी, एडवांस नहीं, सीनियर डिवोटी बन गए ना हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं पता है, ये आप जरा जांच लो अपने अंदर, हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर जूनियर डिवोट्स को मिलते रहते हैं हम लोग अधिकतर समय, और सेकंड नंबर का समय सीनियर से बिताते हैं, और बहुत ना के बराबर समय हम इक्वल लोगों के समय बिताते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि इनके तरफ से इतना आदर तो नहीं मिलेगा हमको, और उतनी करुणा भी उनको हम दिखा सकते नहीं जितना हम उनको दिखाते हैं, दोनों तरफ की जरूरतें अलग जगह पूरी हो रही है, इनसे तो वो भी दोनों ही नहीं हो रहे हैं। तो मैं तो सेवक हूँ, मैं तो प्रचार कर रहा हूँ प्रभुपाद के आंदोलन में, महाप्रभु चैतन्य के आंदोलन में, मुझे और भक्तों को बताना मिलना चाहिए और बनाना चाहिए, इसलिए हम धीरे 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 जैसे हमारे समय बीतता है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, 5 साल हो गए, फिर 10 साल हो गए, तो हम धीरे धीरे इक्वल लोगों को मिलना धरा अनजाने में कम 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 कर देते हैं, और जूनियर से और सीनियर से मिलते रहते हैं। लेकिन इक्वल लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको बिना हिचकिचाहट से बता सकता है, प्रभु जी ये अंदर आपके तकलीफ है, ये सुबह पर सुधारना चाहिए। वो ना आपको सीनियर बताएगा, क्योंकि वो भी देखेंगे कि चलो इतना कष्ट नहीं देंगे इनको, और जूनियर भी नहीं बता सकते, इक्वली लोग बता सकते। और अगर हमको नए भक्तों को गाइडेंस देना है तो वो हमेशा आप लोग, आप एक दूसरे के साथ में कैसा व्यवहार कर रहे हो उसको बड़ी सूक्ष्म नज़र से देखते रहते हैं, और उनसे उस व्यवहार से जो वो देखते हैं हमारे अंदर, उससे उनको बहुत प्रेरणा या बहुत निराशा प्राप्त होती है। तो अगर आप एक दूसरे के साथ बड़ा आदर से, बड़ा प्रेम से व्यवहार करते हैं, वो उनके लिए बड़ी प्रेरणा का विषय होता है। जब भी हम गिरिराज महाराज और राधान महाराज को एक साथ देखते हैं, उनका आदान प्रदान देखते हैं स्टेज पर या पर्सनली, में बहुत प्रेरणा मिलती है। जब एक ज़माने में पूना फेस्टिवल हुआ करता था तो लोगों का यही था फीडबैक कि जब हम 3-4-5-6-10 सन्यासियों को, हाँ सन्यासियों को एक साथ देखते हैं और वो जिस तरह से व्यवहार करते हैं, बातें करते हैं, देखते हैं, तो वो पूना फेस्टिवल में सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग चीज़ था। प्रवचन तो थे ही इंस्पायरिंग, लेकिन जब उन लोगों को एक दूसरे के साथ में व्यवहार करते हुए देखते थे तो वो सब लोग कहते थे कि ये सबसे बड़ी, जब दोनों को गले मिलते देखते हैं स्टेज पर या किधर पर्सनली आते जाते तो बड़ा अच्छा लगता था सब लोगों को। अब उसमें कहाँ कथा कर रहे हो, कहाँ लेक्चर दे रहे हो, या दोनों समझो स्टेज पर बैठे हैं और इन्होंने इनके तरफ मुड़के भी देखा नहीं, उन्होंने भी इनके तरफ मुड़के भी देखा नहीं, अपना प्रवचन किया और चले गए। बहुत फैंटास्टिक प्रवचन दिया दोनों ने, लेकिन दोनों के अंदर नज़र की भी एक्सचेंज नहीं हुआ। तो आपको समझ में आता है कि तो अकेले बैठे हुए हैं, किसके साथ नहीं बैठे हुए हैं, 50 लोग साथ में, लेकिन वो अकेले ही हैं, अपना बोल के चले गए वो। ये भी लोगों को समझ में आता है, मन मुटाव जो होता है उनके बीच में, तो भी लोगों को समझ में आता है कि ना इन लोगों, ये दोनों का बहुत अच्छा प्रेम है, इनका इतना अच्छा प्रेम नहीं है, इसलिए हमेशा यहाँ ही झुक कर बात कर रहे थे, इधर झुके नहीं वो। ये सब लोगों को, सभा में बैठे हुए लोगों को ये ध्यान में आते रहते हैं, आप ये मत समझना कभी। इसलिए सेकंड, एक तो पहली बात मैंने बताई, दूसरी बात ये है कि आप लोगों के बीच में जो प्रेम का संबंध होना चाहिए उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। हिजोलिनी राधानाथ महाराज ने हमको हॉस्पिटल शुरू करने के पहले, जब हॉस्पिटल अभी मतलब हो ही गया, ऑलमोस्ट बन गया, शुरू होने वाला था, तो उन्होंने हमारे साथ मीटिंग किया था 97 में जब मैं वापस आया तब। उन्होंने कहा कि ये हॉस्पिटल का जो स्ट्रेंथ है वो आपका बिल्डिंग नहीं है कि आपने इतना बिल्डिंग बनाया, इतने बेड्स का बनाया, इतने स्क्वायर फीट एरिया बनाया, इतना करोड़ रुपये खर्च किया, इतने इक्विपमेंट्स लाए आपने, इतने आपकी फैसिलिटीज है, इतने डॉक्टरों को खड़ा किया आपने अलग अलग विभाग के, ये आपकी बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं होगी। ये हॉस्पिटल की जो मजबूती है, जो ताकत है, वो आप 6 लोग एक दूसरे के साथ में कितना प्रेम रखते हो, वो भी कृष्ण कॉन्शियस प्रेम, ऐसा नहीं भौतिक नहीं, कृष्ण भावना में आधारित प्रेम, और आप का संबंध कितना दृढ़ होगा उस विषय में, कृष्ण भावनामृत के स्तर पर आप लोगों का संबंध कितना दृढ़ होगा, वही हॉस्पिटल को दृढ़ बनाएगा, और वही हॉस्पिटल को, जो मिशन से हमने हॉस्पिटल खोला है उस मिशन को आगे बढ़ाएगा। और जितना आप एक दूसरे से ऐसे मन मुटाव रहेगा, कुछ गलत फहमियाँ रहेंगी, दूर रहेंगे, कुछ ज़्यादा संपर्क नहीं रहेगा, उतना हॉस्पिटल का ढांचा जो है वो कमज़ोर होता जाएगा। और इस बात का अनुभूति भी हमको बाद में हुआ कि अगर हमारे 900 एम्प्लॉयज़ को पता चलता है कि अभी विश्वरूप दास और माधवानंद दास का बनती नहीं है एक दूसरे से, पूरा हॉस्पिटल का वातावरण चेंज हो जाएगा तुरंत तुरंत। या किसी जगह पर उनका मतभेद होते हुए नजर आया उनको, जब मेरा और गिरिराज प्रभु का अभी आजकल जमता नहीं है, एक दूसरे का मुंह भी देखते नहीं है वो, ये अगर बात लोगों को अनुभूति हुई तो वहीं से हमारा स्पिरिचुअल केयर समाप्त होना आरंभ हो जाएगा। इसलिए किसी भी कीमत कर अगर हमारे किसी विषय पर मतभेद हो सकते हैं, होते ही हैं, क्यों नहीं, मैं अलग व्यक्ति हूँ, अलग व्यक्ति, तो हमारे फिलोसॉफी के अनुसार हमारे अलग अलग विचारधारणा हो सकती है वो हमारे फिलोसॉफी के अनुसार सही है, सब कुछ योग्य भी है, लेकिन फिर भी मतभेद तो होते हुए भी, मतभेद मतलब वैसे मतभेद नहीं, झगड़े वाले मतभेद नहीं, मतलब ये काम ऐसे करना चाहिए, इनका मत अलग है, मेरा मत अलग है, ये मतभेद कर रहा हूँ मैं, विचारधारा में अंतर हो सकता है, लेकिन उन सारे चीज़ों को टॉलरेट करके हमारा जो आध्यात्मिक संबंध है उसे हमको कहीं भी ठेस नहीं लगाना है। हम चाहे मीटिंग में 4 प्रकार के ओपिनियन दे सकते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा ओपिनियन है कि नहीं करना चाहिए ऐसा, और इनका ओपिनियन नहीं, 4 लोगों ने मेजॉरिटी में कहा कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, और मेरा बिल्कुल विरुद्ध मत था उसके लिए कि नहीं ये सही नहीं है, वो एक व्यावहारिक बात हो गई। लेकिन जो हमारा प्रेम संबंध है उस पर कहीं भी आँच नहीं आनी चाहिए, ये मतभेद और निर्णय अलग अलग होने से, डिसीजन लेने से नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो लोग उसको फील करते हैं और उसके द्वारा फिर वातावरण बिगड़ता है। तो इस प्रकार से छोटा हो आपका संप्रदाय, अपना समुदाय, या बड़ा हो, इन भावनाओं को अच्छी तरह से सोच समझ कर विचारपूर्वक परवरिश करना चाहिए इन भावनाओं की। आपके सबके मिलकर जितने अनुयायी यहाँ पर आपके ट्रेनिंग के अंदर होंगे उनको सबको लगना चाहिए कि इनके अंदर ना बहुत अच्छा एक बॉन्ड है प्रेम का, और ऐसा लगना ही चाहिए कि राधानंद महाराज के जो शिष्य है ना उनका बहुत सुंदर बॉन्ड है, और राधानंद महाराज का और गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य का इतना अच्छा बॉन्ड नहीं है, और लोकनाथ महाराज जी का और गोपाल कृष्ण महाराज का वो नहीं है ऐसा, वो अपने अपने में बहुत ज़्यादा प्रेम रहता है उनका। एक बार आपने बीज डाल दिया अपने व्यवहार के माध्यम से तो वो निकालना बहुत मुश्किल रहेगा आपको, क्योंकि जैसे बीज डलता है ना उसका ग्रोथ होना शुरू होता है तो उखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और एक बार पौधा बनने से पेड़ बनने से बहुत मुश्किल है। बाद में आपने कितना भी आपने बताया नहीं नहीं ऐसा नहीं है वो ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, वो सब बेकार की बातें हैं, ऐसा लोगों को पता चलता है। तो हम लोगों को सबको इससे ऊपर उठना चाहिए और उस प्रकार का संबंध होना चाहिए। और ये भी निश्चित है कि सब लोगों का इक्वल प्रेम का संबंध नहीं हो सकता है, क्योंकि सब लोग अलग अलग जीव हैं, अलग अलग जीवात्मा हैं, तो नेचुरल स्वभाव से किसी के साथ ज़्यादा अफिनिटी होती है, किसी का नहीं होता है। हाँ, ये आपका हो सकता है किसी गोपाल कृष्ण महाराज के डिसाइबल से आपका ज़्यादा प्रेम हो सकता है और आपने राधानंद महाराज के डिसाइबल से उतना नहीं हो सकता है, कि एक पर्सनैलिटी का केमिस्ट्री होता है ना, हर जगह पे वो नहीं होता है, लेकिन वो शिष्य किसका है उसके ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए, हृदयपूर्वक होना चाहिए, शुड बी जेन्युइन। तो फिर वो हृदय की जो सादगी है और जो व्यवहार है हृदय का वो लोगों पर असर करता है। अभी आप पूछे। बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस प्रकार का व्यवहार। मेरा उत्तर सेम है उसके लिए, आपका व्यवहार, आप अगर मिठाई हो तो आपको मिठाई लोगों को स्वाद देना चाहिए। मिठाई कभी स्वाद बदलती है क्या? लोगों को देखकर कड़वी हो जाती है किसी को देखकर, किसी को मीठी लग जाती है ना। अगर आप मिठाई हो और जलेबी हो आप, तो सब जगह वो मिठाई आनंद देगी लोगों को। तो वी डोंट नीड टू चेंज एज पर पीपल, आप जैसे हो वैसे रहो, आप पर लोगों आपके हृदय में बहुत प्रेम है तो वो सबके लिए ऐसे ही रखो, भेदभाव मत करो उसको, किसी को फेवर मत करो, किसी को फेवर और किसी को अनफेवर मत करो, उसी भाव करो। और ऐसा भी है ना कि जैसे समझो हमारे गुरु जी के समझो 500 डिसाइपल है समझो, तो मेरा हो सकता है 20 लोगों के साथ मेरी नहीं बनती है बिल्कुल, और 300 लोगों से ओके है सब, लेकिन 25 लोगों से बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मैत्री है, वो उसमें भी होता है, नेचुरल है वो। तो उसके लिए भी अस्वाभाविक बनने की जरूरत नहीं, यू हैव टू बी नेचुरल, यू कैनॉट बी आर्टिफिशियल। लेकिन किसी भी संबंध को बढ़ाने के लिए हमारे तरफ से कुछ पहले होना चाहिए, नहीं वो मुझसे बात ही नहीं करता, मैं क्यों बात करूँ उससे, ऐसा ज़रूरत नहीं है। हमारी महाराज यात्रा में बताते हैं कि आपको इस यात्रा में कितने नए डिवोटी से आपका पहचान हो गई, नहीं तो कैसे होता है 5,000 लोग यात्रा में जाते हैं, आप लोग क्या करते हो, मीरा रोड हो गया तो दिल्ली के रूप में जाके बैठ जाते हो, उनके ही हिसाब में चलते फिरते हो और उनके ही बीच में बात करते रहते हो, उनसे ही बात करते रहते हो। रशियन लोग अपने रशियन के ही बीच में रहते हैं और वो दिल्ली वाले दिल्ली में रहते हैं और पुणे वाले पुणे ही बात करते रहते हैं। वो कन्वीनियंस के लिए वो लोग बस में अगर आपको रखेंगे, लेकिन हमारा फोकस अगर उधर ही रहेगा तो हमने यात्रा में जाके किसी से नहीं पूछते हैं कितने लोगों से, नए लोगों से आप भक्तों से अपने पहचान कराया इस यात्रा में, उतनी अपनी यात्रा सक्सेसफुल है। क्योंकि यात्रा में एक तो है कथा सुनना और स्थान देखना, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पज़ है भक्तों का संग करना, भक्तों के बीच रहना और उनके साथ में। इसलिए उसका बारे में सोचो ही मत, आप अपना जो प्रवृत्ति है वो सेम रखो। और समझो कभी कभी आपने बहुत कोशिश किया और रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो उसमें मन में अंदर बुरा मत मानो, ठीक है ये डिस्टेंस में, ये संबंध में 5 मीटर का अंतर है, ये संबंध में 5 फुट का अंतर है, ये संबंध में आधे फुट का अंतर है, हो सकता है तो लिव इट एज दैट, इसमें क्या दुख मानने की जरूरत नहीं। कभी 5 फुट का 5 सेंटीमीटर हो जाएगा समय के अनुसार, कभी कुछ ऐसा प्रसंग आया वो बीमार हो गया आपने उनको जाके हेल्प किया, 5 फुट का 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, वेट फॉर दैट, उसमें क्या है। अगर जैसे एक साधु के मन में सबके लिए इक्वल करुणा होती है, वो करुणा के मात्रा में फर्क नहीं करते कि हाँ ये मेरा शिष्य है, ये मेरे गुरु भाई का शिष्य है, ये तो अलग संप्रदाय का किसी महाराज का शिष्य है, तो घोड़े मटके हैं, जरूर नहीं है। वैसे वृंदावन मंदिर में जाएंगे तो आपको पता भी चलेगा ना कि ये घोड़े मटके शिष्य हैं, इतने एक जो मिलजुल के रहते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा बाद में, अच्छा ओ आप ऐसा है क्या, ऐसा आपको लगेगा। बट घोड़े मठ हमारे अंदर कुछ अंतर नहीं है, सेम मंत्र जब करते हैं हम लोग, सेम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। प्रभुपाद जी घोड़े मठ के ही थे, घोड़े मठ से ही निकल कर गए थे प्रचार करने के लिए, और वही तत्वों को उन्होंने प्रचार किया। तो वैसे हमारी चेतना जो है ना वो ऐसे विस्तारित होनी चाहिए, शुड एक्सपांड। हम लोग क्या करते हैं, जब वो है ना वो घोड़े मठ का है, वो है ना वो निम्बार्की है, वो है ना वो पुष्टि मार्गी है, तो उसमें क्या होता है हमारा जो बेनिफिट हो सकता है उनके संग में वो टल जाता है, और हम लोग फिर ऐसे अपने जाति बुद्धि से वो बराबर डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये ऐसा है ये वैसा है वैसा है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने चारों संप्रदाय से दो दो चीज़ें उठाई, उठाई कि नहीं उठाई, उन्होंने ये कहा दिम्बार्क का अपने को कुछ कनेक्शन नहीं है, अपने को क्या करना है, मेरे ईश्वरपुरी जी ने और माधवेंद्रपुरी ने जो बताया उसी को मैं लूँगा, मैं वाकई मुझसे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से चारों संप्रदाय से दो दो चीज़ें उठाकर अपने संप्रदाय में सम्मिलित किया उसको। अभी भी हमारे अब उनके भक्ति के व्यावहारिक रूप में बहुत अंतर है, जिस प्रकार से उनका होता है वैसा हमारा अलग अलग होता है, लेकिन एसेंस तो हमारा सबका सेम है ना, सब चारों संप्रदाय बोनाफाइड है, और चारों संप्रदाय भगवान की भक्ति की ओर ही प्रगति करते हैं। आपका नियम अलग है, उनका नियम बाल भाव में करते हैं, पुष्टि मार्ग में भगवान को बाल स्वरूप में ही सोचते हैं, और निम्बार्क में राधा कृष्ण को ज़्यादा, राधा तत्व पर ज़्यादा जोर देते हैं, ऐसा है ना, वो उनकी विशेषता है, स्पेशलिटी। आप पंजाब में जाओगे तो आपको पराठा अलग टाइप का मिलेगा, बॉम्बे में करेंगे तो उतना नहीं बनेगा अच्छा, पंजाब की लस्सी पियोगे तो बॉम्बे में आपको डुप्लीकेट नहीं कर सकते, और मुंबई की पानीपुरी आप पंजाब में डुप्लीकेट नहीं कर सकते, है ना अंतर सर। तो अपने अपने संप्रदाय की विशेषता है वो, लेकिन फिर भी हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग तुरंत ऐसा तो अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं कि मैं तो निम्बार्कियों के बीच में आ गया, अभी मेरे को तुरंत निकलना है यहाँ से, दिस इज आवर मेंटेलिटी, ये हमारा कंडीशनिंग है, यही जाति बुद्धि जो इधर व्यवहारिक रूप में जाट और गुज्जर के रूप में करते हैं व्यवहारिक रूप में, और इधर आकर फिर इस तरह की जाति बुद्धि दिखाते हैं। इज इट नॉट अ फैक्ट, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो इसे हमको मूलभूत तरीके से मुक्त होना है, और ये मैंने अपने गुरुदेव के व्यवहार में देखा है, जब वो राधा वल्लभ मंदिर में जाते हैं तो कैसा उनका व्यवहार होता है, जब वो किसी मायावादी से मिलते हैं फॉर एग्जांपल तो कैसा व्यवहार करते हैं, ऋषिकेश जाते हैं तो उधर वहाँ के सन्यासियों को मिलते हैं तो कैसा व्यवहार होता है, और जब गौड़ी संप्रदाय के लोगों को मिलते हैं या ब्रजवासियों को मिलते हैं तो कैसा व्यवहार है उनका। तो वी हैव लॉट टू लर्न फ्रॉम दैट, एक्चुअली उनका एक समान व्यवहार होता है, उसका बेसिस क्या है, सबसे बड़ा बेसिस उनका है व्यवहार का नम्रता और आदर, दिस टू थिंग्स आर मोस्टली मैनिफेस्ट इन द रिलेशनशिप. जब भी वो किसी से मिलते हैं जो इस्कॉन से नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे बड़ा उनका प्राधान्य होता है नम्रता और आदर के ऊपर, उनका आदर और उनके प्रति अपनी नम्रता. इस स्थाई भाव को वो छोड़ते नहीं कभी भी, इसलिए सब जगह जाते, सब जगह प्रिय हो जाते हैं. वृद्धाश्रम के अंदर भी प्रिय है, श्री रविशंकर जी को मिले वहां पर भी प्रिय है. ये देखा है, क्रिश्चियन कभी कभी उनका संबंध होता है, कभी कभी चर्च से नन से होता है, तो भी मैंने देखा है. जो भी मिलते हैं तो उन पर प्रेम ही करते वो, क्योंकि वो उनको प्रेम देते हैं. वो ऐसा भेदभाव नहीं करते कि मैं तो पहले जू था लेकिन अभी हरे कृष्ण बन गया, अभी आप जू, मैं कोई संबंध नहीं आपसे, आप क्रिश्चियन हो, कोई कनेक्शन नहीं हमारा आपका, ऐसा नहीं. वो जीव के, जीवात्मा के दृष्टि से उनको देखते हैं, वही प्रेम वही उनको देते हैं. तो लोग उस प्रेम को महसूस करते हैं. अल्टीमेटली प्रेम ही सब कुछ है. प्रेम नहीं है तो बाकी व्यवहारिक नियम पालन करने से कुछ लाभ नहीं होता है, लेकिन प्रेम होने से हृदय को आनंद होता है, भगवान को भी खुशी प्राप्त होती है. तो ये दो बातें हमको रखना है सबके बीच, आदर और नम्रता, जिसको भी आप मिलेंगे उसके प्रति. और जब भी किसी को आप करुणा देंगे और प्रेम देंगे तो उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए मात्राओं का, सबको एक तरह से देखना चाहिए. हमारे काउंसिलिंग ग्रुप में भी कितने प्रकार के लोग हैं, अलग अलग गुरुओं से एस्पायरिंग हमारे काउंसिलिंग ग्रुप में हैं. श्रीदामा प्रभु के ग्रुप में तो कितने सारे गुरु जी के डिसाइपल्स हैं, ऐसा है. तो वो हमारे लिए बहुत सावधानी से हमको रहना है, हमको ऐसा भेदभावपूर्वक बातें नहीं करना चाहिए, मन में भी सोचना नहीं चाहिए, पत्नी से भी ऐसी बातें नहीं करना चाहिए वैसा है वैसा है, क्योंकि वो मन में अगर कहीं होगा तो फिर कभी ना कभी तो उसको मैनिफेस्ट होगा ही ना. वो अगर आपके मन में वो बात है तो कभी ना कभी वाक्य में आएगी, वाचा में आएगी, व्यवहार में दिखेगी भेदभाव वाली बात. लोग बराबर फील करते हैं उसको, लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, खास करके नए लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि वो दुनिया भर के लोगों के संबंध से निराश होकर भक्ति में आ रहे हैं और उसी प्रकार की भावनाएं वो इधर भी देख रहे हैं, तो उनको ज़्यादा कुछ प्रेरणा नहीं मिलती. उनको लगता है कि इधर क्या डिफरेंट है, इधर भी वही माहौल है, क्या है, खाली हजब करते तिलक लगाते बस, बाकी तो सब कुछ सेम है, इधर अंदर से कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो उनको प्रेरणा नहीं मिलती है. प्रचार का मतलब क्या है ना, वो करुणा जो है ना, वो समानता की भावना जो है, वो ही सही प्रचार है. एक्चुअली प्रचार मतलब ये नहीं कि माइक लिया और प्रवचन दिया और जोरदार तालियां लोगों ने बजाई, वाह वाह 50 श्लोक कोट की एकदम छंद में सुंदरता से, एकदम इम्प्रेस करते लोगों को, वाह. उससे भी लोग प्रभावित होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उससे दिमाग अधिक प्रभावी होता है, आत्मा अधिक प्रभावी नहीं होती है. आत्मा प्रभावी तब होती है, प्रभावित तब होती है जब आत्मा के जो गुण हैं वो प्रकट होते हैं. जो आत्मा की स्पिरिचुअलिटी है ना, वो जब प्रकट होती है तो सिंपल शब्दों में भी वो हृदय को प्रभावित करके छू के चली जाती है और एक बहुत सुंदर बुद्धि के आधार पर दिया हुआ सुंदर प्रवचन सुनकर केवल बुद्धि प्रभावित हो सकती है. या किसी का प्रवचन में बहुत जोक्स होते हैं और बहुत सुंदर, वो कदम कदम पर आपको हंसाते हैं और लोग वो कोई भी जोक मिस नहीं करना चाहते हैं. क्या क्या बोले, क्या बोले, क्या हुआ, वो लोग तो क्या अभी क्यों हंसे, तो वो आपको मन को अफेक्ट कर रहे हैं, बुद्धि को भी अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, खाली मन का मनोरंजन के लिए आप वहां बैठे हो. आध्यात्मिक प्रवृत्ति उन्नति नहीं हो रही है. लेकिन जो जैसे मैं अपने राधा गोविंद महाराज है, हाँ देखो आप उनका, मैं कभी भी बोलता हूँ हमारे घर से कि वो एक ही टोन में प्रवचन देते रहते हैं. भी कृष्ण हंस रहे हैं, अपने सखाओं को गुलचा मार रहे हैं या गोपियाँ रो रही हैं, ये कितनी अलग भावना है, लेकिन वो उसको एक ही टोन में बोलते रहते हैं. उसमें ना उतार चढ़ाव कुछ होता नहीं भावनाओं का, कुछ इमोशंस ऐसा कुछ होता नहीं, एक ही प्रकार से वो एक ही टोन में सारी लीलाओं को वर्णन करते रहते हैं. लेकिन जब आप सुनते हैं ना उसको, तब कभी भी आपको ऐसा लगता नहीं कि इसको बंद करो, क्या ये मनोरंजन प्रवचन हो रहा है, ऐसा आपको कभी लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें इतना आध्यात्मिक भाव है, इतना आध्यात्मिक भाव है कि वो ज़रूरी नहीं उनको वो झोंक मारने के बीच में या तो कोई ऐसा फवारा उड़ाने के बीच में कोई ऐसा, एक स्टाइल से वो अपना कथा बोलते रहते हैं, क्योंकि उसमें बाहरी उतार चढ़ाव कम है, आध्यात्मिक सब्सटेंस ज़्यादा है उसके अंदर, इसलिए आपको आत्मा को छूता है वो. मैंने कई बार उनकी कथा सुनी, कई 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 बार मुझे यही बात की अनुभूति आई कि एक व्यक्ति एकदम ऐसे मंद गति से और किसी भी उतार चढ़ाव के बिना भी प्रवचन देकर लोगों को छू सकता है। वैसे हमको देखना चाहिए कि हम दिमाग को प्रभावित कर रहे हैं, मन को प्रभावित कर रहे हैं या आत्मा को प्रभावित कर रहे हैं। वो जरूरी है वो समझना, और वो सब्सटेंस लाने के लिए हमारा जब बहुत सुंदर होना चाहिए, जब के लिए हम डेडिकेट होना चाहिए, हमारा लिए हमारा जीवन जब की प्रक्रिया के प्रति समर्पित रहना चाहिए, तभी जाकर हमको अनुभूतियाँ प्राप्त हो सकती हैं, तभी जाकर करुणा उत्पन्न हो सकती, तभी जाकर हम लोगों को जेन्युइनली हृदयपूर्वक लोगों को हम हेल्प करने में सफल हो सकते हैं ना किसी भेदभाव के। कोई भी जीव भगवान की भक्ति में आने का प्रयास कर रहा है तो हम उसको हेल्प कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसी चक्र में फंसे रहेंगे हमेशा हम लोग। और कोई प्रश्न है किसी का?
When we have a group of, let's say, approximately 12 to 15 new people, I mean, really new to, completely new to Krishna consciousness. So what we do, we start with a six-week PowerPoint presentation slides. We give a snapshot of what Krishna consciousness is all about, Bhagavad Gita, especially Bhagavad Gita. And after that, once those 6 weeks of PowerPoint presentations are finished, we convert them into Bhakti Vriksha students, okay? And that is a course that actually lasts for 64 weeks, okay? So it takes about 16 months, you know? If you're doing one class, if you're holding one class a week, it takes about 16 months. And once that 64-week Bhakti Vriksha is finished, then we convert them into Bhakti Shastri students, which is a systematic, you know, verse-by-verse study of Bhagavad Gita. And that lasts for about 5 years. You know, again, you're considering or assuming that you're holding one class every week. You know, one class of couple of hours. You know, so that goes on for about 5 years. Once that is finished, then you know, once a person is able to complete Bhakti Shastri successfully, then they get converted into Bhakti Vaibhav.
So, what is your question?
So, I'm trying to understand. You know, this is the model that we are following here. Because this is the model that we followed when I was based in another country. So I was based in Australia for many, many years. This is the model. Are you following a similar model?
My little bit question in this is, the 64 lessons are inclusive of Vaishnava etiquette or only philosophy?
It covers. So towards the end of those 64-week program, the last 6-7 weeks are dedicated towards Vaishnava etiquette, Vaishnava behavior.
Does your answer in English or Hindi?
English, please.
So, this PowerPoint presentations, this 64 lessons, Bhagavad Gita course, these are all philosophical trainings mostly. And which is required. Philosophical training is very important. Unless Siddhanta is very clear in your mind, you cannot make progress because you don't even know, I am not this body, I am soul, then everything else is on different platform. So, philosophy is very important. And that training is very also important. But along with philosophy, there are two more things are there, sadhana and sadachar and siddhanta. So equal stress should be given on sadhana and sadachar. Sadachar is how you behave, Vaishnava etiquette. So it has to be balanced. You cannot, of course there are many courses, VIHE is formed or MIHE is formed, Mayapur Institute of Higher Education, Vrindavan Institute of Higher Education, they are formed only to teach people about the philosophical aspects of Krishna consciousness, which is very strong basis of our foundation of our movement. What do we stand for? So it's very important. But only philosophical training is not going to make a devotee into a devotee. Sadachara and sadhana is extremely important. So I think it should be balanced, number one. All three things should be balanced. And this is how we also go, same way. We also have the same thing. But I would say that we stress more on Vaishnava etiquette at the same time, because टू द डिग्री यू हैव अंडरस्टूड द फिलोसॉफी एंड टू द डिग्री योर साधना इज गुड टू दैट डिग्री योर व्यवहार विल बी कृष्ण कॉन्शियस बिकॉज कृष्ण कॉन्शियस डजंट मीन यू नो व्हेन वी कम टुगेदर एंड टॉक अबाउट फिलोसॉफी एवरीबडी इज सो क्लियर अबाउट इट एवरीबडी इज सो एक्सचेंजिंग सो नाइसली कृष्ण कॉन्शियसनेस इज परसीव्ड when you deal in normal dealings like you feed others you treat your guests a guest comes from village to you he's not a devotee but he comes to you in such kind of you know not very specific conditions like sannyasi comes to your house you already know kya kya karna hai but suddenly village people come to you you are totally different so that is where your true krishna consciousness is put at test At heart, what are you? Are you a trained person for a thing, or at heart you are a Vaishnav? That is where your real Krishna consciousness is tested. And when your guests come from village, no one is going to come and find out what he is doing. Let me see how far his Vaishnava dealings he is doing with them. Nobody is going to bother. But sannyasi comes, people will ask you, so what happened? So what did he speak? So, which classes he gave? What did you feed him? How did he like it? You know, did he like what I sent? People inquire. But when village people come, nobody inquire. But I would say, your Krishna consciousness is really tested when nobody is going to inquire about it. What you did? When you go to the bank, how did you behave? When you are in the train, the unknown passengers, how was your behavior? It's okay, don't sit here. When you can, let him sit for 1 hour, but you say, no, idhar baithna nahi, udhar jaake baitho, ye hamara seat hai. Or, as soon as station comes, before station comes, when train was moving, you're sitting like this. As soon as station comes, you start lying down. Is this not true? Why start lying down? Because in the next station, somebody will come in the reserve bogey and try to sit on your seat only. And you don't want them to sit on your seat, so you start, you don't need to lie down, but you start lying down. All these are manifestations of our consciousness. How we behave in a very ordinary dealings, you know. When you go to Baniya or when you go to negotiate with somebody for bananas on the road. How do you do all that is the real manifestation of your consciousness. And if you are a devotee at heart, your devotion at heart will manifest everywhere whatever you do. People should feel by doing vyavahar with you, ki ye aadmi devotee hai. Your baniya should feel, ki ye aadmi devotee hai. Your bhangi should feel, ki he is a devotee. This person is a devotee. Flat number 13 is a devotee. So, I would suggest that equal stress should be given on sadhana and sadhachara. And sadhachara, sometimes you don't need to train. Maybe when sannyasi comes, you have to bow down. You know, you have to wish them. When guests comes, you have to give him water and asana. This training is required. But still, you have to train them by your example, how you deal with things which are common dealings in your life, that you earn money, you work in the office, and even your non-devotee colleagues in the office should feel that this man is a devotee. Yeah? Bhakt hai. Uske vyavahar mein aapko pata chala ki bhakt hai aadmi. That is what is ultimate training. Yeah, you trained your counselees into nice Bhagavad Gita shlokas, they know pit-pat all shlokas, important shlokas, they quote anywhere. Good, very good. But doesn't end over there. So I would suggest that.
So my question was slightly different. What I was trying to find out was, do you follow a set course in Bombay?
Yes.
Like Bhakti Shastra? Like
yes. Whatever you said, same thing we follow.
Exactly the same.
Yes.
Thing. So you start with a 6-week PowerPoint presentation, convert that into Bhakti Shastra.
6 week, what is that, Bhagavad Gita course?
6 week, PowerPoint.
Huh? That Pune temple has started. It is the same thing. We don't do it as GYS,
yeah.
But we do in a different fashion. But the same purpose is there.
Very similar.
Yeah.
And then you have a
64 lesson also is there now. We have made a system called as mentor system.
Yeah, so name could be different, but the content
is... mentor system is 64 lessons only.
And once that is finished...
Then they become counselees.
Sorry?
And they go to Bhakti Shastri program.
Bhakti Shastri.
So but everybody may not go.
Yeah.
So all mentees who complete 64 courses, they may not take a Bhakti Shastri.
Basically, being a counselee is the thing, you know, like after that, they join the counselee for so many things like Vaishnava etiquette and all these things.
There's one-to-one attention is given to them.
You know, if they want to go for Bhakti Shastri. Okay. It's not like compulsory, you know, like Bhakti Shastri has to be done. It's not like that.
Yeah. But anybody who wants to, because you can't leave, for example, if a person has completed 64 weeks of Bhakti Raksha, just for example, and if you just sort of, if you don't let him graduate into another higher program, he will be lost.
There should be opportunity given to him.
Absolutely.
At the same time, there should be no force.
No, there is no question of a
this inspiration should be there. Okay, absolutely. Prabhu, can you do Bhakti Shastri now?
So he needs to graduate into something better or something higher. So that, you know, his
opportunity growth is there.
Opportunity growth is there.
So close the door. Yeah,
so do follow the, exactly the same.
Yeah, and what is most significant in our counseling system is that we all are trained, and that is a stress given to all of us by the board to take care of everybody nicely. Even though I was just thinking while coming from Vrindavan to Delhi that we were also told that if counselors don't call you, you should be calling them once in a week. It's very highly difficult instruction, but at the same time the principle is that you don't wait for counselors to call you and then put questions to you and then only you'll answer. Only when they need, they'll let him call, I'll help them. It's a proactive activity. You have to, Prabhuji didn't call me. So then counselor will call. So he says, how are you, Prabhuji? How things are? And not with specifically some people we are very close. That's also natural, but again, there is no differentiation of personal care also. Everybody is supposed to, this is the instruction given to us. And we are trying to follow that. Because practically speaking, working outside and doing so many duties, it may not be possible to do every single thing, but goal is given to you. You are supposed to do proactive care for them. Not only, it's not need-based, only when they need, they call you and then you give their time to them. That much kindness is there in you. But at the same time, if somebody doesn't call you, doesn't mean that he doesn't have any problems. He's just not coming out with you. So you go and show compassion, kindness, care. They should feel cared for. The whole purpose of counseling system is that even though you don't meet as often as you feel like meeting, but you feel ki I am cared by him. He takes care of me. I know that he is very caring for me and he is concerned about me. That feeling you have to generate in your counselee's mind. Now this is not philosophy. This is not how many rounds you chant or he chants. This is something of a different platform. But at the same time, it is the result of your Krishna consciousness at heart, which makes you feel kind, compassionate and caring to somebody else. It is connected. It is already on a different platform, but your caring nature is directly proportional to your sadhana and your understanding of philosophy at the same time. It just cannot be mechanical, caring nature. People are also caring outside, but they are bodily careful, caring maybe. They are on different, philanthropically caring. They give clothes to you, they give cataract operation to you, they give glasses to you, they give blankets to you. But our caring is spiritual. We also give blankets and we also give glasses. But our caring is a spiritual platform, which also manifests on other levels. It doesn't get stuck in other level only. It's beginning from spiritual level, it percolates to other levels. So keep stress on that caring aspect of the system. If you train them well in Shastra, Bhakti Shastri, Sloka, everything, they train them well in Seva to come on time and cut vegetables, everything. But if they don't feel cared for, they only see Prashasan, Anushasan, they see only your expert management of the whole thing. Still they will not make any spiritual progress. They will make some progress, but not desired progress. The desired progress of spiritual life will come when you feel cared for by sentient devotees. Then you feel inspired within to make Krishna conscious progress. Because then you feel that Prabhuji is so caring, you know. I should please him by my Krishna consciousness. That mood develops from within. So for that, you have to, one principle which I was told, I'll tell you exactly. In 1989, Radhana Swami Maharaj put me as counselor. that system was just beginning that time. So he said, all the doctors, budding doctors, student doctors should take, become his counselors. Like that he told in Radha Gopinath temple. So naturally it was a big responsibility. You know, I was like a student, just passed out few years after my MBBS. So maybe 6 years in Krishna consciousness. And this responsibility came up, you know. All the doctors who were elder to me in age also were my counselors at par, and younger also, all of them by lot they were my counselors. So I asked Maharaj, ki, what is the essence of being a counselor? I wanted to know exactly kya karna hota hai, what do you expect? He said, counselor means going out of the way and helping a counselee. Not only in making Krishna consciousness progress, but on all his things, like he has some disease, he has some problem, he has some son's education problem, some mother-in-law problem, some father-in-law problem, some practical problem at home, financial needs, everything. You may not be Brahma that you solve all problems of everybody. you should not even think like that. But you are concerned about it. Many times I keep counseling somebody, but things don't change in his life. Then what changes? His strength inside to face those changes takes place, no? Increases. Things don't change, but by your loving care, he gets strength to manage all those things. Chalo bhai, Prabhuji se baat karke, Mataji se baat karke, lagta hai ki itna kuch bura nahi hai, chal sakta hai. Same things appear to be so big, they appear to be okay. I mean, I can manage with them. So you not change the external situation, but you have given them strength to bear the situation. So that is the point. You have to come out of your comfort zone to take care of your counselors. You cannot say ki wo 9 se 5 ke beech mein aayega to baat karunga. Abhi nahi baat karunga. Sometimes we go in the middle of the night when something happens. Everybody, I'm talking about myself. Everybody does that. And counselors sometimes when they put up questions and some situation to you, the counselors run in the middle of the night to solve. Many times they are on the verge of divorce, you know, and then 2 a.m. in the morning they are fighting as I'm just quitting the house right now. And then he calls, Prabhuji, come. So we go. Pacify situation. So that very going, you may not have solved the situation, but the very going, they feel, my God, Prabhu, Mataji, Prabhuji, raat ko aa gaye 2 baje. That means they care for us. Otherwise they say ki, abhi aap so jao, kal se bhi baat karenge. It's so easy to say, na? It's time to sleep, don't fight anymore. We'll talk tomorrow 10 o'clock in the morning. So, it's also all right, they will not feel bad about it. But when you go, like meri mummy abhi ja rahi hai, abhi usko lagta hai 15 minute mein chali jayegi wo. She will die. And you appear that time suddenly, to give your kindness and Krishna conscious input to the dying person. It touches the heart of the person. Kare, raat ko aa gaye. Ab wo aaye aur unhone jap kiya aur tulsi diya aur gangajal diya aur prarthna kiya aur 15 minute mein mataji chali gayi. It's like unforgettable experience. The edge that you have created in the heart of the person is eternal. Eternal inspiration you have given. So that is what is the crux of the whole matter. Maharaj said in one line, going out of the way and helping and caring your counselors for. Caring for your counselors. It's like a line on the rock, engraved in rock in my heart. Whenever I think about this, I remember the statement like that. Now the number has increased and it was like not as much as then. Less number. Now we have more number, people have graduated and new people have come. And this keep happening. And more number are there of people. Various places are there. They may not be officially your counselors, but they are still under your care. They may not be official counselors of yours. But wherever people feel dependence on you, you extend your care. If they show dependence on you on a certain matter, maybe they'll be in Nepal, may there be in Pune, may there be in South India, may there be in Bombay. Wherever people genuinely want to show dependence on you need to extend yourself, and you can't say, no, I'm, you're not my counselor, please go to your counselor. इट्स अ इंटरडिपेंडेंट सिस्टम. इट्स नॉट दैट कि ए हाउ यू टॉक टू माई काउंसिलिंग ऑन दिस मैटर. डोंट यू नो ही इज माई काउंसिलिंग? ही सपोज टॉक टू मी. आई एम टेकिंग केयर ऑफ हिम. इट इज नॉट द मूड. द मूड इज दैट वी जॉइंटली टेक केयर ऑफ द काउंसिलिंग. एट टाइम्स योर काउंसिलिंग मे गो टू हर फॉर सम डिफरेंट प्रॉब्लम. एक्सीडेंटली यू मेट एंड यू कैंट क्वेश्चन कि हाउ यू गाइडेड हिम लाइक दिस. इट्स मैटर ऑफ इंस्पिरेशन. आई एम नॉट ओनिंग और पोजेसिंग दैट पर्सन. सी यू आर रजिस्टर्ड अंडर मी. हाउ कैन यू गो टू दैट पर्सन? यू आर सपोज टू ओनली कम टू अदरवाइज यू चेंज द काउंसिलर एंड गो टू दैट पर्सन ओनली. रजिस्टर योर अंडर हर ओनली. दैट इज अगेन यू आर ट्राइंग टू पोजेस योर पर्सन. नो कि हे यू आर अंडर माई कंट्रोल. ओके यू ओनली लिसन टू मी. हाउ यू चेंज द जॉब इज आस्किंग मी. टू दैट एक्सटेंट पीपल गो समटाइम्स. सो वी आर हियर टू ओनली इंस्पायर. And if your job of inspiring him is also done by her at certain times, you should be grateful. I saw he was very peaceful after meeting you. Thank you very much. You helped me. Like that our mood should be. Caring means it's not just possessively caring. Caring means real genuine caring. If someone else does caring and your counselee is very inspired by that, you should be grateful. And whenever he comes to you, you show your kindness. Yes, Prabhuji.
Just a related question, Prabhuji. Once, let's say, the group members have completed a 64-week program, as you said and Mataji said, that you know some people do take up Bhakti Shastri, which is the next step, and some people decide against it. So the people who have decided against it, what is the next step for them?
They remain counselees. And you keep taking care of them, okay. Of their chanting, of their Vaishnava etiquette, of their philosophy, of their all other aspects of Krishna yatras and everything. You take care of them. Yes. And they remain 25, 30 years under you, so it's all right. Okay.
So basically, they don't take the next step, or they sort of, and you, how do you ensure that they're, they are cultivating spiritual knowledge constantly?
Because they are counselees. Okay. They keep attending counseling meetings and they keep are in touch with you. All their life is known to you, supposed to be. And you are aware fully what's happening. Okay. And they keep meeting you in counseling meetings and they keep participating. Counseling meeting doesn't mean counselor comes and gives lecture. That's not a satsang program. Mm. Counseling meeting means everybody is talking. And counselor is just there. If anywhere he wants to make comment, then he makes comment. Or sometimes he prepares one topic and also presents. But essentially everybody is turn by turn preparing kirtan, philosophy, Vaishnava etiquette, drama. Everybody is supposed to be involved and it's a participatory, interactive program. So that's how you monitor them. Prabhuji, you have not spoken philosophy for a long time. Next time you prepare philosophy and come. So my philosophy coordinator will give topic to you. Also will guide you a little bit and prep you up. And you will come next time and you will talk philosophy. Prabhuji, you have not sung kirtan for a long time. Why are you so shy? Give kirtan to him next time. So he will do kirtan next time. Like that we keep. And we are also watching ki this Mataji is always keeping aloof on because she thinks her voice is not good. So she's feeling shy. We are not here to hear your voice, how classical you are. We want you to sing the Harinam, Sankirtan. We want you to sing the bhajan, however out of sur it may be. So that's how it continues. And then everybody is also not fit to do Bhakti Shastri by intellectual capacity. That is also possible. But they will remain, they will take Diksha one day, they will take Brahman Diksha one day, and they will remain, and then sometimes they are very qualified, so they become mentors first, and they become counselor afterwards. All things are happening. Some of my counselors are also mentors. They have mentors under them. He is my counselor, but he is mentor to some people. And some of them have graduated and become counselors. So many of them become counselors now. Those who were counselors before. Most of them have become counselors. And new people have come under. So that's how their future journey takes place. Like that.
And like Bhakti Shastri is like, it is like every week class or whatever. Mm-hmm. But in counseling group what happens is, we also discuss philosophy. Every time we take one book and it goes slowly. It is not as fast as Bhakti Shastri, but and then exam and all those things are all there. But still philosophy is the same philosophy, same books we are using. So philosophy is there. So same thing. Like Bhakti Shastri, somebody who wants to be like very on that, like, you know, pace, that, you know, intellectual pace, then I want to do this and I want to complete Bhakti Vaibhav, and
yeah,
that's a different mood. Everybody does not have that mood.
And those people who are doing Bhakti Shastri in your group, they lead the philosophical discussion. They are like philosophy coordinators, I would say. And then they will tell others how to prepare for that shloka, Bhagavad Gita. They give their guidance to people who are not doing Bhakti Shastri when their turn comes to present Bhagavad Gita in our presentations. Like, for example, right now we are doing Bhagavad Gita in our group. So they are the one, there are 4-5 doctors who are already doing Bhakti Shastri. So they very nicely guide the other people and keep the thing on nicely, interesting, and very nice, Prabhuji, very beautiful actually. Like that. Any other question you have? Yes, Madhuri.
So some distance comes in relations also. So therefore, one will never be a good role model. How to deal with that? Kya karna chahiye? How to go out of the way? And you said that you should go out of the way to help others spiritually. Now, if other person has less interest spiritual area mein, hum jitna bhi kitna bolna chahiye, kitna nahi bolna, kitna extend karna chahiye. So,
but kindness is beyond all these things, no? Suppose you are a devotee and you get some of your distant relative in need of some help when he is sick, for example. So you cannot say ki, I only would like to extend my help to Krishna conscious sick people and not non-Krishna conscious sick people. You may have something in mind like that ki, mera paisa hai na, main to khali devotees ko lagaungi. But beyond that, if somebody is genuinely in need and need of compassion from your side, and whatever capacity, you may not be a millionaire to give 6 lakh rupees for an operation, but you always can give. Or a bhangi's child is unable to get admission in the school and he's going to many people where he's collecting kachra, asking, can you help? And if you feel ki, I can give 700 rupees, you should give, because apparently, you cannot justify, see, my money is not in Krishna's service. My money is in service of that bhangi, actually. But compassion is the aspect of Krishna consciousness of you, which should be there in us or not. I may not be able to give 7,000 rupees. If he is demanding from that, Mataji, can you give it? Then he says, no, I can give you 1,000 rupees. So, that is where your devotion comes into action, na? You're not a closed, compartmentalized person ki nahi kar sakti main. We are told ki even the road mein jab beggar aata hai, then your car should always keep some prasad. If you don't have prasadam, give him 2 rupees. Why is that? Because when you say no, you become hard-hearted. Not he. He will try with you 5 times and he'll go to next person. But in the process, you have become more hard-hearted than before by just saying no. So that is where our genuine Krishna consciousness comes into picture, when nobody is going to watch you on the particular signal on the Chanakyapuri. No devotee is watching you, what you are doing. But you are watching yourself and Krishna is watching you, exactly what you are doing in a Krishna conscious manner. I am not a selective Krishna conscious person. In this environment, I am Krishna conscious. Out of that, I am pakka karmi and pakka cutthroat businessman. That is not a devotee. I mean, we are, of course, trying to make progress, but we should not become compartmentalized devotees. We become genuine devotees. So when your relatives come home, just be kind with them. Nice. When my wife, we get relatives, you know, she will make nicest dishes for them, you know, because that's how they will be able to relate to Krishna consciousness. If you tell them you are not his body or spirit soul, they say, "Yahan kahan aa gaye inke ghar pe yaar? Kabhi bhi aate to you are not his body, spirit soul, batate rehte." But if you don't talk, for example, my in-laws, for example, my family members and her family members, suppose, when they come together, for years we have told them, but they have not shown any interest. So we do only one thing. When they come, we will bring nice gifts for them, some cow products, some unique things, and she'll make wonderful cuisine, extraordinary cuisine, you know. And they will be so thoroughly impressed. With genuine devotion, she will cook and she will offer them. So through that particular item, particular cake, particular sabji, particular item, their heart will see, they will see, ultimately dal is dal, but when cooked with devotion, it has a different effect on your heart, right? So that way you connect with them. All time you may not tell them ki, अरे क्या आप लोगों को 50-15 साल से बोल रही हो, आप लोग अभी एक माला भी नहीं करते हो, मुझे नहीं मिलना आपसे, बोर हो गया मुझे मिलके. ऐसा यू कैंट डू ना. मेंटेन योर रिलेशनशिप्स एंड यू नो एट देयर ओन लेवल. सम पीपल विल नीड फूड, सम पीपल विल नो सम इमोशनल हेल्प, सम पीपल विल लाइक फॉर एग्जाम्पल हर ग्रैंडमा फाइनली वेन शी वुड बी इन डिस्ट्रेस इन ओल्ड एज शी वुड कॉल हर एंड टॉक टू हर ऑन द फोन. मतलब नथिंग कृष्णा कॉन्शियस इन द टॉक, बट जस्ट द फैक्ट दैट grandma is calling me because she needs me for some emotional support, I must give it as whatever you say, kindness you say, love you say. So then people understand ki main to nahi devotee banunga lekin ye aadmi devotee hai, that they come to know, and that inspiration will never, it's an eternal thing. See, your brother may not become devotee, your sister may not have become devotee, your XYZ mustn't have become devotee. But if they have genuine respect for you as a devotee through your behavior that you have cultivated, it will go with them as a eternal inspiration. Prabhupada said, if you happen to appreciate a devotee in life, your spiritual life has begun. So in front of your eyes, in your lifetime, they may not take up Krishna consciousness the way you want. But the inspiration that you have given them as a nice person, hey, because of Hare Krishna, na, this Mataji, this my auntie has become so nice person actually. So that genuine appreciation which you have created by your behavior in their heart will somewhere in down the line in their lifetimes will bring them to Krishna consciousness. So we should not just give up, you know, kya abhi. Of course, we give priority. Sometimes you need to attend devotees more than that time you are all right. But generally speaking, just don't compartmentalize. Be a devotee in all circles, all times, all seasons. So people appreciate that. Your classmates, like your school friends, they are all on WhatsApp group nowadays. They will keep reading your messages and will not get any response to you, or they will never become devotees or never respond to your request of coming to temple or somewhere. But down the line when they read, they may not respond, but they are genuinely appreciate ki ये अपना क्लासमेट है, डिवोटी है, इज अ नाइस पर्सन. एंड समटाइम्स व्हेन दे हैव सम क्वेरी दे विल पुट टू यू ऑन योर अकाउंट की व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, बिकॉज ऑलरेडी दे हैव टेकन यू एज अ सिंसियर डिवोटी बाय यू आर डीलिंग विद देम. देयर इज नो प्राइड दैट यू आर शोन कि तुम लोग क्या रहे, क्या करते हो तुम लोग, लाइफ तुम्हारा वेस्ट हो गया. दैट प्राइड यू आर नॉट शोन टू देम. मेनी टाइम्स वी फील ना कि एक्चुअली दे हैव वेस्टेड देयर लाइफ, यू नो दे हैव स्टिल स्मोकिंग, स्टिल च्यूइंग टोबैकोज, एंड 50 years I have been telling them from my college days. But we don't condemn them for that. We just genuinely maintain the friendship part of it. And by that they really respect you. I can't follow what he is doing, but he doesn't condemn me when he meets me. Every time he meets me, he just keeps on poking me on the sides. Doesn't. That someday, when they will come in some situation, they will approach you only at that time. And that time you go all out to help them and to take them out of their muck. So there's no definite line that you have to draw. I cannot tell you that abhi ye this is their daire mein aap kaam karo. No, you have to see situation wise. Whenever, and then sometimes, you know, people have husbands not devotees at all, wives are devotees. When wives are not devotees at all, husbands are devotees. Hai na? Or children are not devotees at all, husband wife are devotees. Aise kitne combination apne sampradaya mein aapko milte hain. But then we don't give up. Aisa, we don't just say, kya hamari ladki, kya hamara ladka, abhi pata nahi kya kar raha hai wo. Your compassion and kindness continues, na? Still you keep connecting, keep giving them prasadam, cook for them regularly, cook tiffin for them, you know, when they go out, you do send something for them. You continue your activity without fruit, with fruit, don't worry about it. Just be a genuine devotee at all times with them. You don't change as per their changes. You keep yourself on the same platform, whatever happens with them. Then it will affect their heart, definitely affect their heart. There's some people she has given prasadam for 25 years. And she'll keeps giving whenever they come. And they have no interest in Krishna consciousness. If you say Hare Krishna on the WhatsApp, they will say hi. Purposely they'll show you that I'm not going to wish you Hare Krishna back. But still you keep giving prasadam. Does that answer your question?
Mostly, yes.
If you have any specific, you can ask me.
No.
But we have to ultimately grow, Mataji. Ultimately, we have to keep growing ourselves. Others grow or not, you leave them on their own and inspire them. But we need to keep growing. We cannot just remain there stagnant and remain compartmentalized, remain like a horse with covered eyes and only in front we see. We have to grow. Grow means we grow in compassion, grow means we grow in kindness, helpful nature, caring nature, grow in tolerance, grow in humility, grow in gratitude. We should become more gratitude as time goes by, more perseverant, more sincere. That's how we have to grow. Yes. हाथ जोड़ के करेक्ट करना है आपको, खास करके द 70 ईयर ओल्ड पर्सन मस्ट हैव बिकम जस्ट डिवोटी लास्ट मंथ फॉर एग्जांपल, एंड यू आर 25 ईयर ओल्ड, ईयर 30 ईयर ओल्ड काउंसलर फॉर एग्जांपल, यू हैव बीन देयर फॉर 10 इयर्स एंड ऑलरेडी यू आर पोस्टेड योरसेल्फ, दे हैव पोस्टेड यू एज अ काउंसलर, क्वालिफाइड काउंसलर, एंड 70 ईयर ओल्ड पर्सन कम्स एज अ काउंसलर टू यू, यू हैव कॉन्स्टेंटली रिमेन लाइक सन टू हिम. Maybe constantly you have to keep touching his feet as an etiquette. You may not be able to bend, maybe backache, but you have to show that you respect him like anything. Otherwise, if we don't know general etiquettes, what to speak of spiritual etiquettes? General etiquette is you respect an old man, old lady, give them seat, you know, give them a chair to sit down because backache is there. Though general etiquettes we need to have, na Prabhu. So if they appear to be making some mistake, for example, as per our understanding, then with folded hands you have to nicely, with full respect, how would you do with your father? Maybe with your father, maybe we will talk arrogantly. I am wrong example giving to you. But generally respectful person comes, and if you genuinely see, how would you do? Only with respect you can do that. You cannot treat him like a child, you know, and start treating him like a student, like you have student in your college maybe. And so there are always all kinds of people are there in the counseling group. But we need to keep showing respect. An old man is, you know, he has lived his whole life, 70 years, and he is taking training from now 30-year-old man, for example. If he's already humbled himself in front of you, so you have to show him that respect and appreciation. And help him in a different way. If some counselor is there, 25-year-old to you, you can talk to him in different language because he's younger to you and he has that natural respect for you as an elder person, a qualified person. You can talk to him in different language. We talk to everybody in different language, right? Is it not true? So to them, most important is respect. So never ever correct them in public. Talk to them personally, side mein jaake, if you have to correct them anyways. You have to keep their dignity and respect always on. And never condemn them or look down upon them and treat them like that. You just imagine yourself, if somebody is, you become 70-year-old, can you become counselor of 30-year-old man? Impossible. But he has already become. So how much appreciative you should be. He has done something which I cannot do as a counselor. Is it not true? So that respect and appreciation has to be there. Yes, Prabhuji?
Koi baat nahi, Prabhuji. Jab hum kisi group संख्या में जो भक्तों को हम उनका मार्गदर्शन के रूप में सेवा करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे मार्गदर्शक के जीवन में सबसे बड़ा चुनौती या सबसे बड़ा जो उसके मार्ग सेवा के मार्ग में जो बाधा पैदा हो सकती है वो क्या चीज़ ऐसी होती है जिसको उसको हमेशा निरंतर रूप से ध्यान रखना चाहिए।
रॉन्ग एग्जाम्पल, आप कितना भी अच्छा क्लास देते होंगे, कितना भी अच्छा फिलोसोफी जानते होंगे, लेकिन गलत व्यवहार का एक गलत उदाहरण आपने सामने खड़ा किया ना, तो सारा आपका मेहनत पानी में चला जाता है। ऑल योर एफर्ट विल बी वेस्टेड बाय वन रॉन्ग बिहेवियर, वन रॉन्ग एग्जांपल, वन अपॉर्चुन टाइम यू मिस बिहेव्ड। ऐसा होता है। सो द ग्रेटेस्ट फियर फॉर अ प्रीचर और अ गाइड और मार्गदर्शक और अ काउंसलर इज टू एग्जिबिट रॉन्ग एग्जाम्पल, और उसके लिए हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए कि हमारे तरफ से कभी कभी रॉन्ग व्यवहार, रॉन्ग एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए। और अभी आप भी इंसान हो, गलती आपसे भी हो सकती है, तो देन इन दैट केस बी जेन्युइन। समझो आपके हाथ से गलती हो गई है, अभी आपको पता चला कि 25 साल काउंसलर बनने के बाद में भी आपके हाथ से अभी एक बहुत भयंकर गलती हो गई है काउंसलिंग के विषय में, काउंसलिंग बहुत डिस्टर्ब हो गया, अपसेट हो गया आपके लिए, क्या करना चाहिए आपको उस समय? क्षमा करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए आपको। कौन यू शुड बी रेडी टू बाउ डाउन अगर आपने गलती किया है, और अगर आप वो करोगे ना तो आपकी गलती एकदम 50 साल पहले ही भुला दी जाएगी, इस तरह से आपका संबंध बनेगा उनसे। अगर काउंसलर अगर माफ़ी मांगने में अगर हिचकिचाता है, उसका उसका प्राइड उसको अलाउ नहीं करता है वो कि मैं काउंसलर हूँ, अमुक हूँ, तमुक हूँ, और उसको अगर वो तकलीफ़ है उसमें, तो फिर यू आर लॉस्ट द रिलेशनशिप्स फॉरएवर। और कभी भी देखो ना, कभी भी कैसा होता ना, जैसे फॉर एग्जांपल समझो मैं अभी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ, समझो मैं हमेशा मेरे ट्रेनिंग से समझो लोगों को पूछता हूँ कि समझो मैं हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ और मैं हॉल में से गुजर रहा हूँ और मुझे कचरा दिखाई पड़ता है वहाँ पर, और मैं वो झुक जाता हूँ, कचरा उठाता हूँ अपने हाथ से और कचरा के डिब्बा में डालता हूँ, तो मैं पूछता हूँ आप लोगों को कि आपका मेरे प्रति आदर कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? क्या उत्तर है उसका? क्या आप सोच रहे हो कि सर भंगी बन गए अभी आज से? ऐसा कोई सोचेगा? हमारे हॉस्पिटल में सीनियर्स पहले, अभी थोड़ा बंद हो गया, वो पहले टॉयलेट साफ करते थे वंस इन अ वीक टर्न बाय टर्न। तो समझो अचानक डॉक्टर संखे माधवानंद दास सडनली एक स्टाफ उधर यूरिन करने के लिए बाथरूम में गया और देखा तो डॉक्टर संखे वहाँ पर बाथरूम साफ कर रहे हैं, तो वो देख के डॉक्टर संखे के प्रति आपका आदर बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा नेचुरली। उसी तरह से जब आप सीनियर डिवोटी होते हो और आप गलती करते हो तो आप जूनियर के सामने माफ़ी मांगते हो तो आपका सम्मान कई गुना बढ़ जाता है। और काउंसलर्स को भी ये बोलना चाहिए आपको हमेशा कि मैं भी एक इंसान हूँ और मेरे यहाँ से भी गलती हो सकती है, मैं प्योर डिवोटी नहीं हूँ, और जब भी मेरी गलती होगी और मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, कृपा करके मुझे माफ़ कर देना आप, प्लीज़ फॉरगिव मी, I also have to have right to be forgiven also, ना? मैं भी एक इंसान हूँ, मैं गलती करता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ, तो मुझे माफ़ी मिलने का भी अधिकार है आपसे, तो प्लीज़ फॉरगिव मी। और मुझे ऐसे सिंहासन में जाके मत बिठाओ इतने ऊंचे कि मुझे वहाँ बैठना मुश्किल है, आपने मुझे बिठा दिया उस सिंहासन पे ऊपर और मैं उसके इतना योग्य नहीं हूँ, और बाद में मुझसे कुछ गलती होगी तो आप तुम बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे मुझे कि ए प्रभु जी से क्या ऐसा कैसा हो सकता है, हाउ प्रभु जी कैन डू दिस, ऐसा मत करो। मैं भी आप में से एक हूँ, साधक हूँ, मेरे भी स्ट्रगल्स है लाइफ में, मेरे भी बहुत सारे साधना में तकलीफ है और मेरे भी अनर्थ हैं, सबके साथ मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ आप जैसा ही, केवल एक लौकिक दृष्टि से मैं इस कुर्सी में बैठा हूँ और आप नीचे बैठे हो, मेरी ड्यूटी आपको ट्रेन करने की दी गई है और आप मुझसे ट्रेनिंग ले रहे हो, इसका मतलब मैं एक संत नहीं बन गया, मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, और मुझसे कभी गलती होती है तो मुझे उठा के फेंक मत देना आपके ग्रुप में से, स्टिल एक्सेप्ट मी एज योर ओन। ऐसे में मेरे काउंसलर्स को बार बार बोलते रहता हूँ और बहुत उसे बहुत शर्मिंदा होते रहते हैं मैं जब बोलता हूँ। मैं मतलब मैं आपको डायलॉग नहीं मार रहा हूँ आपके सामने इम्प्रेस करने के लिए, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। कल उठ के कुछ गलतियाँ होती है तो मुझे आप डिस्कार्ड मत कर देना, क्रॉस मत कर देना मेरे ऊपर, अपने में रखना मुझे और मुझे इम्प्रूव होने का और माफ़ी प्राप्त करने का भी हकदार बनाना। नहीं तो आप मुझे ऐसा डिस्कार्ड कर रहे हो कि प्रभु जी से मैं ये व्यवहार एक्सेप्ट नहीं कर सकता, अभी आज के मेरे जीवन से वो बाहर हो गए, आई नो मोर वॉन्ट टू डू एनीथिंग विथ हिम, ऐसा मत करना। क्योंकि जैसे हर व्यक्ति को माफ़ी की आवश्यकता होती है, तो मुझे भी आवश्यकता है माफ़ी की, मैं गलती करूँगा तो आई कैन बी जस्ट डिस्कार्ड इट बिकॉज आई डिड वन मिस्टेक ना। तो ये जो भाव है ना वो ऑन रहना चाहिए, क्योंकि रॉन्ग एग्जाम्पल हम तब तक ही बने ही रहेंगे जब तक हम लोग प्योर डिवोटी नहीं बनते हैं। इतने अनर्थ है ना, वो बीच में आते रहते इधर उधर, तो हम लोग के अंदर वो माफ़ी मांगने की प्रवृत्ति होनी चाहिए और माफ़ी मांगने के बाद भी, माफ़ी मिले के बाद में अपना सेवा कंटिन्यू करना चाहिए। मेरे जीवन में सब कुछ हुआ है ये, और मैं आपको बता रहा हूँ मेरे यकीन एग्जाम्पल से कि जो गलती मैंने किया उसके बाद में जिस तरह से मैंने माफ़ी मांगा उसके ऊपर वो हमारा संबंध इतना दृढ़ हो गया उसके बाद में, तो मुझे पता नहीं था। जब मेरा एक दिन बर्थडे आया तो वो बर्थडे एक साल के बाद में आया शायद मेरा, वो घटना के बाद में, तो वो बर्थडे के भाषण में उन्होंने ये बात बताई कि उनको बहुत उस समय हृदय को फील हो गया कि प्रभु जी ने माफ़ी मांगा हमसे, जो उनको उम्मीद नहीं थी कि ऐसे वो बोलेंगे। तो काउंसलर होना, काउंसलिंग होना, ये तो सब कुछ टेम्पररी पोजीशन है, थोड़ी हम लोग ऐसा गौलोक में काउंसलर बन के जाएंगे। मैं पृथ्वी पर भी काउंसलर था, इधर भी काउंसलर हूँ। हाँ, वी आर सर्वेंट्स अल्टीमेटली, नाम कुछ भी हो, कोई गुरु बनेगा तो भी हम शिष्यों के दास हैं एक्चुअली, सर्वेंट्स ऑफ आर डिसाइपल्स। काउंसलर था सर्वेंट्स ऑफ आर काउंसलीज, मेंटर है तो सर्वेंट्स ऑफ आर मेंटीज, दिस इज आवर इटर्नल पोजिशन। यहाँ पर 50% मिलने के बाद में वो पोजीशन चेंज नहीं होती, वो पोजीशन यहाँ पर भी रहेगी पोजीशन और वहाँ पर भी वही पोजीशन रहेगी, दास 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 अनुदास की, उसको हमको मेंटेन करना है। बाकी सारे टोपियाँ कभी लाल पहनी है, कभी ब्लू पहनी है, कभी येलो पहनी है, वो बदलती रहेंगी, लेकिन एक टोपी जो अंदर है दास वाली वो परमानेंट रहेगी, उसको बनाए रखना है आपको। और जितना एग्जाम्पल आप उस दास भावना के खुद रहोगे उतने आपकी काउंसलिंग प्रोग्रेस करेंगे। और कोई प्रश्न? हाँ यस प्लीज, यस।
कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक काउंसलर किसी भी प्रकार से कुछ वो अपने जो काउंसलिंग है उनके प्रति कुछ शोषण की मानसिकता प्रकट हो जाए,
वो भोग प्रवृत्ति है। कैसे ना कि मेरा ये काउंसलिंग जो है ना वो बहुत बड़ा कपड़े का बिजनेसमैन है, मेरा एक काउंसलर जो है ना वो कस्टम में काम करता है, मेरा एक काउंसलर जो है ना वो पुलिस में काम करता है, मेरा एक काउंसलर गवर्नमेंट ऑफिस में अधिकारी है, तो हम लोग उनका बेनिफिट लेना चाहते हैं, वो भी एक गलत प्रवृत्ति है। क्योंकि मैंने उसका इतना सेवा किया है, मैंने उसका इतना ये किया है, तो मेरा ये हक बनता है कि मैं उनसे कुछ डिमांड करूँ, वो कभी भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मतलब हेल्प हम लेते रहते थे ना, हेल्प लेते रहते नहीं है, लेकिन यू डोंट थिंक दैट आई डिज़र्व दिस। समझो अभी आप हो, समझो अभी आप जा रहे हो ट्रेन से, सब यात्रा में जा रहे हैं और आप भी अपने बैग उठा कर जा रहे हो, तुरंत आप काउंसलिंग भाग के आएंगे, आपके बैग लेंगे, ठीक है, वो देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू डोंट थिंक दैट इज योर राइट टू गिव द बैग टू देम एंड दे हैव टू कैरी योर बैग बिकॉज यू आर ए काउंसलर। हाँ, बैग आप जरूर देंगे उनके आग्रह से, वो आग्रह कर रहे हैं आप बैग देंगे उनको, लेकिन ये सोच के नहीं देंगे, हाँ हाँ वो तो उनका फर्ज है, मैं तो उनका काउंसलर हूँ, मैं बुजुर्ग भी हूँ, उनका ड्यूटी है ये बैग उठाकर मेरा वो हेल्प करना, ये सोचना। और यू बी सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल, सो थैंक यू प्रभु जी आपने मुझे हेल्प किया, डिफरेंट थिंग ना। बैग तो दोनों ही चीज़ में उठाई जा रही है, लेकिन एक में आपका भाव अलग है, एक में आपका भाव अलग है। एंड काउंसलर्स बहुत स्मार्ट होते हैं, वो सब तुम्हारे अपने भाव को समझ लेते हैं अच्छी तरह से। कभी ये काउंसलर मुझे बार बार टिकट निकालने को बोल रहा है, बार बार मेरा ये बिल भरने को बोल रहा है, बिल बिजली का, वहाँ जा रहे हो तो मेरा ये बिल भी भर देना, ऑल दिस थिंग्स वी शुड नेवर डू, जनरली वी अनोइंगली स्टार्ट डूइंग दिस थिंग्स। वी कैन टेक हेल्प ऑफ पीपल बट विद ग्रेटफुलनेस एंड ह्यूमिलिटी यू शुड टेक द हेल्प, नॉट एज योर राइट। और इसी से काफ़ी सारे काउंसलर्स स्पॉइल हो गए हैं इन द पास्ट, नॉट नाउ, because they got in the mode of bhog of their subjects, you know. We are pure servants. We may get help, but we don't keep expecting that the help has to be given, because I served you. I came in the 2 o'clock in the night when your wife was fighting with you. Did you forget? You must book my ticket. What is the problem? That mood should not be there. You from your side should be selfless in all your services. If they reciprocate, fine. Don't reciprocate, you should not change. कि मैंने इतना हेल्प किया, एक बोला टिकट निकालने को, टिकट नहीं निकाला उसने मेरा. अभी मैं आगे मैं उसको हेल्प नहीं करूँगा. 2 बजे नहीं जाऊँगा अभी. झगड़ो रात को, मैं नहीं जाऊँगा. ऐसे अपना एक होता है रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन मन में उत्पन्न होता है. एज अ ऑर्डनरी पर्सन वी आर लाइक दैट, एंड वी आर ऑर्डनरी पीपल ओनली, वी आर नॉट ग्रेट पीपल, बट वी आर सपोज टू बी द एग्जाम्पल. ऑल्दो वी मे नॉट बी क्वालिफाइड टू बी द एग्जाम्पल, बट वी आर मेकिंग एफर्ट टू बी द एग्जाम्पल. At least act in exemplary way, if not in a heartfelt way you are doing. क्योंकि उसमें से फिर क्या होता है, हमारा जो अंदर जो ordinary man है वो जग जाता है उस समय. He just immediate devotee counselor out हो जाता है. Ordinary man comes in picture. Then ordinary reactions will start.
और वो उसके लिए बड़ी दुविधाजनक स्थिति हो जाती है, क्योंकि वो एक जूनियर है और वो उसका काउंसलर सीनियर है. कुछ उसके खिलाफ बोलता है तो वो वैश्व अपराधी के बन जाएगा. उसको इस बात का भय है और यदि वो कुछ नहीं कह रहा है तो उसका शोषण
हो जा रहा है,
होते जा रहा है.
हाँ, तो
उस प्रवृत्ति पर, उस स्थिति में वो काउंसलिंग को कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे
उसको दूसरे सीनियर डिवोटी से जाके बात करना चाहिए. तो काउंसलर का हमारा बोर्ड है ना, हमारे 70-80 काउंसलर्स हैं कपल्स. तो आपको अगर तकलीफ हो रही है अपने काउंसलर की तरफ से, तो आपको किसी अन्य डिवोटी से जाके बात करना चाहिए कि मेरी ये समस्या है, मुझे बहुत घुटन हो रही है उसके बारे में. शोषित रहना नहीं चाहिए अगर आपको तकलीफ हो रही है तो. अगर दिल से आपको लग रहा है कि हाँ जो भी है मैं करते रहूँगा मेरे काउंसलर के लिए, अच्छा लगता है मुझे, वो शोषण करे नहीं करे आई विल कीप सर्विंग हिम, तो ठीक है, दूसरी बात अलग बात है. लेकिन उसको कष्ट हो रहा है उस बात का, उसको लग रहा है कि मेरा शोषण किया जा रहा है, मेरा आई डोंट लाइक टू बी एक्सप्लॉयटेड, तो ज़्यादा दिन उसको मन में रखना नहीं चाहिए. उसका भाव जो है ना पूरा बिगड़ जाएगा. उसके पहले उसको अन्य वरिष्ठ वैष्णव से आके बात करनी चाहिए, अपना हृदय खोलना चाहिए और गाइडेंस लेना चाहिए, या तो काउंसलर चेंज करना चाहिए. क्योंकि जब स्पिरिचुअलिटी खत्म हो जाती है, व्यवहार बचता है, तो काउंसलिंग सिस्टम फेल हो जाती है उधर. यू कीप कनेक्शन for spiritual inspiration. You don't give connection because, oh, my counselor is Mofat Lal, so maybe, you know, I have difficulty of finances, he'll help me. So let me be in this group only. Or my counselor is, you know, XYZ. He's in customs. Maybe whenever I come from abroad, he will help me to get my things through. This is not our platform of connection. Our platform of connection is spiritual inspiration. And if that is not there, only vyavahar is there, some other hetu is there in that, then system is already failed for you. You have made it failed for you. Yeah, this kind of things are material, na? So material things are by nature temporary. So this will end somewhere. It will die its own death, natural death.
With a very bitter experience.
लेकिन
वहाँ पर साधना करने के लिए कनेक्शन यही व्यक्ति है, यही सर्विस सर्वर है, और इसके बारे में यदि मैं किसी को कहना चाहूँ मैं कहाँ जाऊँ, किसको बोलूँ, करके वो ऐसी बड़ी दुविधाजनक स्थिति उत्पन्न हो सकती है.
लेकिन कोई ना कहीं तो ढूंढना पड़ेगा उसको दिल की बात करने के लिए. जैसे अभी आपका डॉक्टर जो है आपको ठीक नहीं कर सकता है, बहुत दिन से दवाई ले रहे हैं आपके डॉक्टर से, आपका फैमिली डॉक्टर है वो, आपका फैमिली का 50 साल डॉक्टर है वो, और आप जा रहे हैं उसके पास, आपका बीमारी ठीक नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे? कोई तो डॉक्टर बदलेंगे ना, कोई तो कोई देखेंगे, इंटरनेट में सर्च करेंगे या तो इलाके में जाकर ढूंढेंगे, जाएंगे उसके पास, कितना दिन उसके पास दवा लेते रहेंगे और बीमारी रहेंगे, जाना तो पड़ेगा ही आपको, एज अ नीड ऑफ द आवर यू हैव टू फाइंड समबडी एंड एक्सप्रेस योर हार्ट, टेक गाइडेंस. ऐसा है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. व्हेन यू need treatment and you're not getting well from your family doctor, so you have to find somebody else and take treatment and get well. बहुत देर तक आपको suffocate करके रहना मुमकिन नहीं है रोजी. Suffocation is not good in Krishna consciousness. हाँ, आपका कोई प्रश्न था ना? हो गया. Any other question from ladies side? Yes, Mother जी. Family responsibilities and other responsibilities. So what is the question?
How to maintain all these things?
Only simple answer is there to this question. Simplest answer I can give is that just be honest. Don't put up a show. If you are unable to do it, say that you can't do it. I'll give you this harmonium right now. Mataji, isko leke aap niche chale jao, mere gaadi tak. You have backache. So you should be honest ki Prabhuji, I cannot lift. Mere ko backache hai, main nahi utha sakti usko. इसमें कुछ अपराध नहीं है, इसमें जस्ट जेन्युइन ऑनेस्टी है आपकी. उसी तरह से अगर आपको भी 20 लोगों की देखभाल करने की आपकी कैपेसिटी है और आपके ऊपर 30 हो गए अभी आपको, तो आपको बोलना है कि प्रभु जी नहीं कर सकती हूँ मैं, आपका जो भी अथॉरिटी है उनको, डोंट इंक्रीज नंबर ऑफ माई काउंसिल इज नाउ, आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ देम. बाकी भी मेरे घर पर सासू जी है, मेरे घर पर हस्बैंड है, मेरे घर में बच्चे हैं, मेरा जॉब है, वॉट एवर घर में काम है, तो हर एक व्यक्ति की एक कैपेसिटी होती है कुछ भी करने की. अभी तेजना की कैपेसिटी होगी कि भाई 15 लोगों को खाना बना सकती हूँ. नहीं नहीं, कल 70 लोग आ रहे हैं तो क्या करेंगे, तो बर्तन भी नहीं है, इतने गैस भी नहीं है, इतना फैसिलिटी भी नहीं है. तो वी हैव टू बी ऑनेस्ट कि आई कांट डू इट, आई वॉन्ट टू डू इट बट आई जस्ट कैनॉट डू इट, आई नीड हेल्प. वैसा ही है अभी. और समझो अभी आप काउंसिलर हो, ठीक है, और आपकी मम्मी नहीं, आपको कोई क्लोज रिलेटिव समझो किसी बीमारी से बहुत बीमार है, कैंसर से बीमार है समझो, तो तभी आपको क्या करना चाहिए? हाँ, तभी आपका एग्जाम्पल है वो कि आप कैसे उदाहरण के स्तर पर आपके मम्मी का देखभाल कर रहे हो. तो आई सीन गिरिराज प्रभु, उनके पिताजी एक दिन गिर गए और बेहोश हो गए, 3.5 महीना बेहोश थे और एंड में उसी में गुजर गए. सो द वे गिरिराज प्रभु टुक केयर ऑफ हिज फादर, वो कंडीशन में वो कई काउंसलिंग मीटिंग नहीं कर पाए, बट उनके काउंसलर्स इतने हाईली इंस्पायर्ड हो गए उससे कि अरे प्रभु जी ने अपने पिताजी का कितना सुंदर देखभाल किया. हर एक व्यक्ति को अपने पिताजी का ऐसा देखभाल करना चाहिए. सब कुछ छोड़ के उन्होंने अपने पिताजी पर इतना कॉन्सेंट्रेट किया, अच्छी तरह से उनका देखभाल करके उनको विदा किया, वापस आ गए काउंसलिंग करने के लिए. लेकिन वो 4 महीने इतना इंटेंस था उनका काम, दिन रात वो पिताजी का लैटरिन भी निकालते थे, यूरिन भी निकालते थे, उनको नहलाते भी थे, बिकॉज पिताजी थे वो, तो वाइफ नहीं कर सकती उनका वो सब सेवा, और बच्चा छोटा था तो वो खुद उनको नहलाना, स्पॉन्ज करना, उनका डॉक्टर के रूप में उनका ट्यूब साफ करना, उनका यूरिन स्टूल चेंज करना, कपड़े सब चीज़ सब कुछ साथ में काम करते करते भी करते थे. रोज ओपीडी के बीच में घर जाके फिर वो चेंज करके आते थे, कभी फीड दे के आते थे, कभी नाइट मॉर्निंग में पूरा ड्यूटीज करके काम पे जाते थे. ऐसा कितना महीना, 4 महीने किया उन्होंने. तो उस टाइम पे ये मत समझना कि अरे मैं तो मेरे काउंसलर्स को मिल ही नहीं रहा हूँ, पता नहीं क्या लगता होगा उनको. नहीं, आपके जेन्युइन नेचर से और आपके ऑनेस्टी से उनको बहुत इंस्पिरेशन मिल रहा है. तो लेकिन आप खाली आपको ना बोलने की क्षमता नहीं है इसलिए आप सबको हाँ बोल के जा रहे हैं, खुद परेशान हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। आपको सही समय पे ना भी बोलना चाहिए कि भाई नहीं कर सकता हूँ, मेरा कैपेसिटी इतना ही है, मैं कर सकता हूँ। उसमें कोई अपराध नहीं है, कोई गलत नहीं है उसके अंदर। और कैसा ना, यू शुड नॉट बिकम टॉर्न बिटवीन द टू थिंग्स, क्या करूँ, एक तरफ काउंसलिंग है, एक तरफ घर के लोग हैं, एक तरफ मेरा जॉब है, सब जगह मैं टूट रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन यू विल डिस्ट्रॉय योर सेल्फ फ्रॉम विद इन। तो यू टू बी जेन्युइन, यानी ये जो ड्यूटीज है परिवार की तरफ उसको अपनी जगह करना चाहिए, काउंसलर्स को अपनी जगह टाइम देना चाहिए, और बाकी जो ड्यूटीज है सबको अपना अपना टाइम देना चाहिए। एवरीथिंग रिक्वायर्स टाइम, आपके बच्चों को आपका टाइम देना चाहिए, काउंसलर्स को भी टाइम देना चाहिए, ऐसा नहीं कि काउंसलर को टाइम देना चाहिए, बट हर एक की एक लिमिट होती है ना। बच्चों को भी इतना देना है तो दिन के तो 24 घंटे ही होते हैं, हर एक आदमी के जीवन में 24 घंटे होते हैं, काउंसलर डजंट गेट 45 आवर्स इन अ डे, तो उनको उसी में करना है सब कुछ, उतना उल्टा तो एडिशनल काम है। लोगों को सब कुछ जिम्मेदारी होती है और वो अपना जीवन जीते रहते हैं, काउंसलर को सब कुछ होते हुए एक और जिम्मेदारी भी है 50 लोगों का देखभाल करने की। ईच वन हैज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि सब लोग आनंद में जब करके एक्सटेसी में नाच रहे हैं और कोई काम नहीं है। अभी कल 15 दिन मेरे को मिलना है, सबके साथ नाचना है, घर जाना है, ऐसा कभी होता है क्या? एवरीबडी हैज जेन्युइन प्रॉब्लम्स, ड्राउन इन द प्रॉब्लम्स, एवरीबडी हैज यूनिक प्रॉब्लम्स, दे मीट यू और डोंट मीट यू। तो एक सिस्टम बनाना चाहिए कि देखो मैं बाबा ये हॉस्पिटल का डायरेक्टर भी हूँ, मेरे को ट्रैवलिंग भी करना पड़ता है, मैं इन इन दिनों में अवेलेबल हूँ, इस टाइम पे मेरा अपॉइंटमेंट लो और मिलो, कुछ इमरजेंसी हो तो देख लेंगे फिर बीच में क्या है। मतलब काउंसलिंग शुड हैव फेथ कि अब तुम जेन्युइन आदमी हो, व्यक्ति हो, और आप हेल्प भी करना चाहते हो, लेकिन ऐसा ऐसा सिस्टम है उसका, कोई इमरजेंसी होगी तो आप कभी भी कॉल कर सकते हो, लेकिन बाकी के लिए मेरा ये टाइमिंग्स में अपॉइंटमेंट लेके आ जाओ। फिर मैं प्रॉब्लम अगर सिंपल होगा तो मैं ऐसा बोलूँगा ना कि 2 बजे ऑफिस में मिलूंगा आपको, नहीं, 6 o'clock के बाद में मिलूंगा ऑफिस के बाद। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टर हूँ इसलिए मैं मेरे काउंसलर्स को ड्यूटी आवर में बुला के काउंसलिंग कर रहा हूँ, उधर मेरा पगार का मीटर चालू है और मैं यहाँ पर आउट ऑफ ड्यूटी में काउंसलर्स को बुला के मेरे अधिकार में काउंसलिंग कर रहा हूँ। इट इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल एट ऑल। एज अ एम्प्लॉई यू हैव टू बी वेरी जेन्युइन एम्प्लॉई एंड सर्व योर एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूशन वेरी नाइसली एंड मेक इट क्लियर टू योर काउंसलर्स ऑल्सो, डोंट एक्सप्लॉइट योर सिचुएशन जस्ट बिकॉज योर डायरेक्टर। प्रभु जी यू कैन कॉल मी ना, फिर क्या है, आप तो डायरेक्टर हो, 3 बजे मिलो ना मुझे, नहीं मिल सकता मैं आपको, मेरा कमिटमेंट वहाँ पर है मेरे बॉस के साथ, मेरे हेड का ड्यूटीज है मेरे साथ। तो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट है नो, एंड नॉट बी हेजिटेंट टू स्पीक द ट्रूथ, नॉट बी ऑलवेज बी एबल टू स्पीक द माइंड टू योर पीपल, प्रेम से, शांति से, बट आपके मन में जो है आपको बोलने की शक्ति होनी चाहिए। आपको वो कैसे बोलो, कैसे बोलो, कैसे बोलो, क्या लगेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। शुड बी वेरी जेन्युइनली हम्बल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम पीपल लाइक इट। बाय द वे फिर आपको बोलेंगे प्रभु जी का कुछ भी हो वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है, वो जो भी है बोल देते हैं, मन में कुछ नहीं रहते हैं। इट्स अप्रिशिएट बिकॉज यू आर जेन्युइनली ऑनेस्ट, वॉट इज द प्रॉब्लम, वॉट आई कैन डू, वॉट आई कैन नॉट डू, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। हमको ज़्यादा हिचकिचाहट होती है कि मैं अगर मेरे काउंसलर को बोलूँगा कि प्रभु जी देखो आपको मैं नहीं ले सकता मेरे काउंसलर ग्रुप में, मेरा ऑलरेडी फुल है, तो उसको क्या लगेगा, और आप लेंगे भी, आपको तकलीफ है बोलने में और उसको सेवा भी नहीं कर पा रहे, तो उस बाद में क्या लगेगा उसको? लगने वाला तो उसको है ही, तो आप ऑनेस्टली बोल दो उसको कि नहीं जमता है मुझे। अभी मैं जहाँ जाता जाता हूँ कभी कभी लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु जी मुमकिन है क्या, तो मैं होगा तो बोलता हूँ, है ना, तुमने तो नहीं बोल देता हूँ, क्या करूँ। जैसे अभी आज मैं गया नोएडा मंदिर में गया, उन्होंने कहा कि कल संडे फिस्ट क्लास देंगे क्या प्रभु जी, तो मैंने कहा नो प्रभु जी आई कैन नॉट गिव, तो मेरा ऑलरेडी कमिटमेंट 2 बजे तक यहाँ पर है, तो अगले संडे का फिक्स हो गया। अगले शनिवार को मैं वहीं आऊँगा और वहाँ IYF क्लास दूंगा, वहीं रहूँगा, बस नेक्स्ट से भागवतम क्लास दूंगा और वापस जाऊँगा। तो जो है मुमकिन वो बोला, जो नहीं है वो नहीं बोला, ठीक है। नहीं तो फिर हाँ बोलेगा तो मुझे फिर यहाँ 2 बजे 11:30 बजे 12 बजे ख़त्म करके ट्रैवलिंग करके 1 घंटा वहाँ पर 1 घंटा 1 बजे पहुँचना होगा, 1 से 2 क्लास देना होगा, फिर 3 बजे वापस उल्टा आना होगा, तो कितना, अगले दिन मुझे ऑफिस में जाना है वृंदावन हॉस्पिस में आई एम कमिटेड. आई कैन जस्ट से कि मैं दिल्ली से आया थक गया, आज मैं कोई काम नहीं करूँगा. इतना प्रचार किया दिल्ली में जाके, आज ड्यूटी पर भी आऊँगा, छुट्टी नहीं मारूंगा, लेकिन मैं बैठूंगा आके यहाँ पर, कुछ नहीं करूँगा आज. नॉट गुड ना. सो फर्स्ट थिंग, मैं आफ्टर ज्वाइनिंग भक्तिवेदांत हॉस्पिटल आई वॉज टॉट एंड आई लर्न्ड हाउ टू से नो. One of the important parts of management, spiritually and materially also, to learn how to say no nicely to people, honestly. Huh? Very difficult, but you have to learn to do it. Otherwise, you will get completely bundled up and, you know, compromised and spoiled in your own life.
We are always bundled.
Yeah. It's good. It's kindness that you can't say no, but ultimately, if you're going to spoil the show anyway, better to say no now. है ना? अब ना नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन शो तो स्पॉइल हो रहा है, तो फिर क्या अचीवमेंट क्या है फिर उसका? बेस्ट वे टू बी ऑनेस्ट. सो शैल वी एंड हियर? यस. Everyone needs a break and deserves a break. We can take a break. Genuinely, if you need, you should take a break. No problem with that. But break should be meant for spiritual rejuvenation and rest and re-strengthening your Krishna consciousness. So read, chant and take rest. You can take a leave of absence. I just read. I sleep first to make up my backlog, and chant, and then I just read. I just love reading various scriptures and absorb myself, nourish nicely. What I was doing when you came, I was so happy. I was reading Lord Chaitanya's pastimes in Vrindavan. I was so happy. So before that, consider yourself as a servant leader rather than only leader. Surely consider yourself as servant leader all times. We are all time servants. Whoever comes, senior, junior, equal, you always remain one constant thing, that is servant. Okay? Jai Jai Sri Radhe Shyam.